ओम ज्ञान तिमिरां दृश्य ज्ञानांजनं शुलाकेन चक्षुरं निर्मितमेत स्मर श्रीगुरुवेन श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामयं ददाति सुदाति जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
पिछली बार हमने चर्चा की थी तीन प्रकार के आहार, अंत में हमने जो चर्चा किया था सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार भोजन। सत्वगुणी भोजन के विषय में हमने सुना था कि वो बड़ा रस वाला होता है, जूसी रस वाला, और मन को और शरीर को संतोष देने वाला और स्वास्थ्य देने वाला। जनरली सत्वगुणी आहार जो होता है, जो भोजन होता है, वो प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि जो ग्रेन्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, गाय का दूध और गाय का दूध से बने हुए आइटम, घी है इत्यादि, और ग्रेन्स जैसे गेहूं है, राइस है इत्यादि, तो इससे बनी हुई जो आइटम होती है उसके साथ वेजिटेबल्स, ये सब है सत्वगुणी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये चार चीजें, इस फोर थिंग्स। अगर आप कहीं पर भी श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे भोजन के लिए, तो प्रभुपाद हमेशा इसी बात को बल देते हैं कि व्हेन देयर इज इनफ ग्रेन इज देयर, अगर पूर्ण मात्रा में अन्न है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, देन वाई शुड वी गो फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल फ्लैश एंड मीट, क्यों हमें लेना चाहिए। प्रभुपाद कई बार कहते हैं अपने प्रपर्ट में, गेहूं, मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर, वेजिटेबल्स, दीज आर ऑल सत्वगुणी, ये सारी चीज सत्वगुणी है। इसको खाने से मन में आहार क्या है, वो श्लोक, आहार शुद्ध होता है तो विचार भी शुद्ध होता है, फिर आप आध्यात्मिक विषय का चिंतन करने में सरलता होती है। कई लोग कई बार कहते हैं कि कभी हमें बहुत बुरे विचार आते रहते हैं, या फिर हम बड़ा क्रोध आ जाता है छोटी बात में, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर इंद्रियां बहुत लालायित रहती है, तो कई बार कहा जाता है कि आप अपने आहार को थोड़ा व्यवस्थित कीजिए। कम खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो अत्यधिक उत्तेजित नहीं होता, उन्मत्त नहीं हो जाता। जो लोग तमोगुणी आहार नहीं खाते, जैसे कि मांस इत्यादि जिसके अंदर प्याज लहसुन भी आता है, ये प्याज लहसुन नहीं खाते, उन लोग में भी क्रोध और उत्तेजना कम होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मेडिकली बहुत अच्छा है, लहसुन तो और प्याज इत्यादि तो बहुत हेल्दी होता है खाने में, लेकिन वो तामसिक आहार होने के कारण आपको क्रोध और उत्तेजना में बढ़ावा होता है, जो कि ये सारी चीज को हेल्थ के नाम पे देखा नहीं जाता। लोग देखते हैं हेल्थ इंप्रूव होता है, लेकिन आपका वैल्यूज डाउन हो रहे हैं, आपके विचार डाउन हो रहे हैं ना, आपका हेल्थ तगड़ा हो रहा है लेकिन आपका जो मूल्य है जीवन के वो डाउन हो रहे हैं। आप क्रोध बढ़ेगा और उत्तेजना बढ़ेगी तो आप क्रिमिनल बन जाओगे, आप गलत कार्य करेंगे, पाप करने के लिए प्रेरित होंगे आप, लेकिन आप वो पाप करने के लिए लोग चाहते हैं, इसलिए वो हेल्थ का बहाना देते हैं,
मन में दया नहीं रहती है
वो तमस आहार के कारण, इसलिए ये सब चीज को वर्जित किया गया है। फिर घी, घी का भी बताया गया, तो ये सब सत्वगुण में भोजन में होता है, क्योंकि वास्तव में घी बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है, बहुत अच्छा है घी खाना, घी या मक्खन ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। यदि भी आज के समय में लोग कोलेस्ट्रॉल के कारण चिंतित रहते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपका वैदिक वो गाय का जो घी होता है, वो गाय के घी से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, मेडिकली भी ऐसा लोग बोलते हैं। बट एनीवे द पॉइंट इज कि भोजन सात्विक होना ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा ही रिक्वायरमेंट है, बहुत ही लाभप्रद होता है। और रजोगुणी आहार में क्या होता है, जिसमें सब कुछ अति अति अति, एक इसमें सब जगह अति शब्द का कॉमन है, अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे इत्यादि। तो जहां पर जितना भी अति है कहीं पर भी, जैसे कई बार आप देखते हो कि लोग अत्यधिक ऐसे ही भोजन पसंद करते हैं, क्या बगैर आप बाहर वाले कुक को बुलाते हो कैटरिंग वगैरह, तो उन लोग का एकदम सीधा लॉजिक होता है कि तेल और मसाले इतने डालते जाओ इतने डालते जाओ तो उसमें सुगंध आएगी, ये सब तो होगा। सो ये सब तो होगा, फोन नहीं कोई ना,
फोन नहीं तो
सो हाँ, तो ये लोग इतना मसाला इतना सब यूज करते हैं और इसका परिणाम क्या आता है, इससे पहले दुख होता है, दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। खाने से तो पहले तो जलता ही है, तीखा होता है बहुत, तो खाया तो नहीं जाता, लेकिन फिर एसिडिटी होता है, फिर छाती में पेट में सब जगह जलन होता है, और अत्यधिक तीखा भी पेट पचा नहीं पाता है। आप शायद आप देखना आयुर्वेद में भी ये चीज आपको मिलेगी कि जो बहुत ज्यादा तीखा होता है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपका या तो फिर आपको लूज मोशन हो सकता है अत्यधिक तीखा खाने से। फिर अत्यधिक गर्म, इतना गर्म होता है कि जीभ जल जाती है, फिर भी खाते लोग, तो इससे दुख तो होता है, दुख के बाद शोक होता है। डॉक्टर जब पूछेंगे ना आपको क्या खाया था कल आपने, तो फिर क्यों खाया था मैंने ऐसा, क्यों खाया था, शोक भी होता है। एक बार देखा कि पूरी हिस्ट्री होती है, 6 दिन पड़ा रहता है अस्पताल में, आप जाकर उनको पूछोगे कि कैसे हुआ प्रभु जी आपको ऐसा, बोले कुछ नहीं प्रभु जी, वहां पर एक जगह गया था, वहां पर थोड़ा सा एक खा लिया था, तभी समस्या आ गई। तो शोक होता है, क्यों खाया था, नहीं खाना चाहिए। और रोग, ये रोग भी होता है। आजकल हमारा भोजन इतना पुअर हो गया क्वालिटी उसका, खाने का उसके जो स्टैंडर्ड्स है, कि रोग स्वाभाविक रूप से जो लोग बूढ़े होते हैं, जैसे 40 क्रॉस करते हैं तुरंत उनका कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है प्रॉब्लम्स, डिसीज। ये पिछले 20 साल में अधिक हो रहा है, 20-25 साल में ज्यादा हो रहा है। आज भी लोग बोलते हैं आगे आता है प्रेम दास, ठीक है। आज भी कुछ लोग कहते हैं, जैसे मेरे पिताजी की उम्र को बोलते कई बार, मेरे पेरेंट्स को 70 इयर्स ओल्ड है पिताजी, लेकिन बोले आपकी उम्र के जब हम होंगे तो हम इतना काम नहीं कर पाएंगे, कहीं आजकल लोग बोलते हैं ऐसा,
केमिकल वाला खाना है।
हाँ, तो हमारा भोजन तो, और जंक फूड इत्यादि लोग पसंद करते हैं आज, उनका जो ट्रेंड है, तो वो तो रजोगुण और तमोगुण में जाता है,
मंचूरियन है, पिज्जा है,
तो
बाकी लहसुन वाली पकौड़ी हो सकता है।
और तमोगुण में क्या आता है? तमोगुण में आता है स्वादहीन, जिसमें स्वाद नहीं आता हो, जैसे मांस, इसमें स्वाद नहीं होता। हमारे एक भक्त है, वो मुझे बता रहे थे कि वो लोग कुछ आटे से बनाते हैं कुछ आइटम, तो उसमें स्वाद नहीं होता है, लेकिन वो विदेश में बहुत बिकता है वो सारी चीजें, सब्स्टिट्यूट है मांस का।
वीगन।
सो स्वादहीन होता है मांस में, मैंने लाइफ में कभी छुआ भी नहीं है मांस को, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि उस पर इतने मसाले डालते हैं तो स्वाद जो होता है केवल मसालों का होता है, मांस का अपना कोई स्वाद नहीं। और वो जो मांस होता है वो सड़ी हुई चीज होती है, क्योंकि कई दिनों पहले वो मर गया है, जो भी मांस है मर गया, डेड वस्तु है, मर गया है, और उसको कई जगह फ्रोजन होते 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 मार्केट में आता है, तो इसलिए ये सड़ी हुई चीज, सड़ी हुई चीज कोई भी हो, चाहे वाइन हो, शराब, शराब क्या है, और सड़ी हुई चीज ही है, तो कोई भी सड़ी हुई चीज जो बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से, कुछ लोग होते हैं बहुत शौकीन होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, कहीं कहीं दिनों का पुराना खा सकते है। हम एक जगह पर गए थे, वो कोई गुजराती आइटम थी, 10 दिन 7 दिन या 10 दिन पहले का कुछ बनाया हुआ था, मूली का कुछ था, वाह वाह इतना बदबू आ रहा था, और बड़े चाव से खा रहे थे, तो हमने उनको कहा भाई आप कैसे खा सकते, बोले ये मेरी फेवरेट डिश है तो क्या हो गया, फेवरेट डिश है तो क्या हो गया। लेकिन ये 7-8 दिन पुराना खाने से क्या फायदा। फिर जूठा खाना, जूठे के विषय में हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमें केवल भगवान या भगवान के भक्तों का जूठा खाने का अधिकार है, और किसी का जूठा हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कई बार ऑफिस में या फिर फ्रेंड्स के साथ, या कई बार होता है ऐसा कि सब एक दूसरे को अपना महाप्रसाद दान करते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, कोई छोटा पार्टी था, यद्यपि मैं तो उसमें भोजन नहीं लिया, लेकिन पार्टी में मैं देख रहा था, एक ही बर्तन था जिसमें से सब लोग अपने जूठे हाथ से परोस रहे थे, तो अभी हाँ वो सिस्टम में बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कोई जो चम्मच से परोसा जाता है वही चम्मच उसके प्लेट के अंदर टक टक करके टच कराते, ऐसे वही चम्मच से उसको टच कराते, उसके प्लेट में टच होती है, तो वो तो अपने आप जूठा हो गया चम्मच, तो उसको दे देना चाहिए, रखो तुम्हें। सो आइडियली ये छोटी छोटी बात होती है, कुछ लोग बोलते वो यार बहुत नैरो माइंडेड हो आप, ओपन होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट नैरो माइंडेड, इट्स अबाउट मेंटेनिंग द प्रिंसिपल्स, ये हमारे सिद्धांत को हमें पकड़ के रखना चाहिए। ये सारी चीजों को छोड़ने के बाद ही हम तमोगुणी होते हैं ना, ये सारी चीज सिद्धांतों को छोड़ने के बाद ही हम रजोगुण तमोगुण में आते हैं। इसलिए जूठा खाना है तो केवल वैष्णव का खा सकते हैं, या भगवान का भोजन जो होता है भोग लगाया हुआ वो जूठा नहीं होता वास्तव में, वो तो महाप्रसाद है, भगवान का भोग लगाया हुआ जो होता है वो बिगड़ता भी नहीं है, अर्थात 3 घंटे पहले बनाया हुआ फिर भी वो दिव्य है। जैसे अभी इक्लिप्स होती है, ल्यूनर और सोलर ग्रहण होता है, राइट, तो ये ग्रहण में भोजन खराब हो सकता है लेकिन प्रसाद खराब नहीं होता है, क्योंकि वो तो 3 गुणों से पर है, भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है उसमें तुलसी के बिना तो भोग लगता नहीं, और जहां तुलसी जाता है वहां पर ग्रहण का असर नहीं लगता, तो इसलिए प्रसाद नहीं बिगड़ता कभी, जिसको भोग लग गया है वो कभी नहीं बिगड़ता ग्रहण में, लेकिन जो भोग नहीं लगा है वो भगवान को भोग नहीं लग सकता है जो ग्रहण में होता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। लेकिन वो कुक किया हुआ, कच्चा नहीं, कच्चा कुछ नहीं बिगड़ता, जो कुक किया हुआ है वही। तो पॉइंट इज कि जूठा भगवान के भक्तों का खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने एक बार देखा था, कई बार देखा था, भक्त भोजन ले रहे हैं और उनका भोजन फिनिश भी नहीं होने देते, हो गया महाराज चलो यू टेक द प्लेट, या फिर कभी डिवोटी प्रसाद ले रहे तो उनका प्रसाद खत्म भी नहीं होता है. सो आइडिया इज नॉट लाइक दिस टू स्नैच इट, छीनने का नहीं होता है महाप्रसाद जो होता है वो छीनने वाली वस्तु नहीं है. आप नियम ऐसा भी है कि आप उनको पूछ के लो कि मैं आपका महाप्रसाद ले सकता हूँ. जिस लास्ट में आपने चर्चा किया था कि गुरु या प्रॉपर डिसाइपल होते हैं तो आप उनकी कृपा ले सकते हो बिना उनको पूछे, लेकिन और किसी की अगर आप कृपा लेना चाहते हो तो आप उनकी परमिशन लेना अच्छा है, क्योंकि क्या पता उनकी आध्यात्मिक शक्ति आपके पाप कर्मों के बोझे को उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी. इसलिए उनसे पूछ के उनका महाप्रसाद लेना चाहिए. जनरल सिद्धांत ये है, लेकिन फिर भी कई बार हमने देखा है कि लोग वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव होते हैं या शिक्षा गुरु या ऐसे कोई होते हैं तो उनका कृपा लेते हैं उनको बिना पूछे. बट एनीवे दैट्स वैष्णव और भगवान के भक्तों का जूठा खाना प्रॉब्लम नहीं, वो तमोगुण में नहीं आता है. जगन्नाथ भगवान का प्रसाद अगर कुत्ता उसको जूठा करता है ना, कुत्ता उसमें से खा लेता है जगन्नाथ जी का राज जो अन्न है, फिर भी वो कुत्ते का जूठा नहीं होता है. और वो हम खा सकते हैं, आप बोले कुत्ते ने खाया मूल गया हम कैसे खा सकते हैं. और आप उसमें का साइंटिफिक चीज देख लो हाइजेनिक है कि नहीं तो आप फेल हो जाते हो, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद कुत्ते खाने के बाद भी वो जूठा नहीं होता. अगर कुत्ता खाएगा फिर भी कुछ नहीं होगा उसको. जगन्नाथ महाप्रसाद में किसी का जूठा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा दिव्य प्रभाव है उसका, इसलिए उसके विषय में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. जगन्नाथ प्रसाद जहां पर भी मिले जैसे भी मिले उसको स्वीकार कर लेना वही अच्छा है. तो इस प्रकार से तीन हमने बताए थे. यस,
हमने ग्रहण में बोला उसमें जो भोग जैसे रॉ जैसे वेजिटेबल्स
सब्जी
उसमें कुछ नहीं दैट वी कैन यूज को वॉश करके फिर यूज कर सकते हैं.
फ्रूट्स एनीवे यू कैन यूज इट रॉ ओनली, जनरली फ्रूट्स यू डोंट कुक, सो दैट इज रिक्वायर्ड दैट यू नो यू कैन वॉश एंड पुट टिल्स ऑन इट, दैट्स इट. क्योंकि रॉ चीज तो ऐसे भी पेड़ के ऊपर भी होती है, सो दैट यू डोंट टच तो वो थोड़ी अपवित्र हो जाती है. रॉ चीज नहीं, कुक जो कुकिंग किया हुआ है
नॉट ऑफर्ड.
यस, हालांकि ऐसा सजेशन है कर्मकांड में कि जो ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर डाला जाता है तुलसी पत्ता या गंगा जल या फिर डाब क्या बोलते हैं दुर्वा वो डाला जाता है, तो उससे ग्रेन्स पवित्र रहते हैं. बट दैट्स फाइन, कर्मकांड के जितना आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो.
ये अपने मंदिर में जो प्रसाद बनता है और जगन्नाथ जी मंदिर में जो प्रसाद बनता
है कोई अंतर नहीं है,
उसमें क्या अंतर है?
कोई अंतर
नहीं, यहाँ खाते तो वो झूठा हो जाता है और जगन्नाथ मंदिर में कोई भी इंसान खाता है तो वो झूठा क्यों नहीं होता?
क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में केवल यही लिखा है कि भगवान का और भगवान के भक्तों का झूठा खा सकते हो और किसी का नहीं खा सकते. तो अगर प्रसाद भी अगर किसी व्यक्ति ने खाया हुआ है तो प्रभुपाद ने यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का मेंशन नहीं किया तात्पर्य में, इसलिए हम प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शन है शिक्षा है उनको फॉलो करते हैं. जगन्नाथ मंदिर की बात अलग है, वो केवल जगन्नाथ जी के विषय में ही है. ऐसे
और मैंने एक दूसरी बात सुनी है कि जगन्नाथ मंदिर में वहाँ के लोग अज्ञारस नहीं करते.
ये बात है, लेकिन कुछ पंडे ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि अज्ञारस एकादशी कर सकते हैं. यहाँ तक कि मैं इनके विषय में भी सुना कि गजपति महाराज भी इसको प्रमोट करते हैं, तो आई डोंट नो. लेकिन वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, एकादशी नहीं करनी. लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको अलाउ नहीं किया था. चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एकादशी करते थे और उनके सारे भक्त भी करते थे. और मैं अभी कुछ चैतन्य चैतन्य पढ़ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे सब एकादशी करते थे जगन्नाथपुरी में सब. वी फॉलो व्हाट अवर आचार्य हैज सेड, हम वही फॉलो करते जो हमारे आचार्यों ने बताया. सो इस प्रकार से तीन प्रकार के भोजन होते हैं और इसी तरह से तीन प्रकार के यज्ञ भी होते हैं। तो पढ़िए टेक्स्ट नंबर 11।
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते।
तो यहाँ पर बताया है सात्विक यज्ञ तभी होता है जब उसके पीछे कर्तव्य भावना होती है। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे तात्पर्य में, मंदिर या चर्च में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि से किए जाते, लेकिन इसलिए उसको सत्वगुणी नहीं माना जाता। जैसे भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना, ये केवल भगवान की पूजा या सेवा करने के लिए है और उनकी सेवा के अर्थ ये किया जाता है। इसलिए अर्चा विग्रह को नमस्कार करने के लिए जाए तब वो सत्वगुणी प्राप्त करता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्र का आदेश का पालन करके भगवान को नमस्कार करे, अर्थात कीर्तन करना, संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ है वो तीनों गुणों से पर है, लेकिन इसलिए प्रभुपाद ने, यदि भी यज्ञ की बात है लेकिन प्रभुपाद ने संकीर्तन यज्ञ की बात यहाँ पर नहीं कही। प्रभुपाद ने सत्वगुणी यज्ञ की बात की जिसमें आता है भगवान को जाकर के नमस्कार करे या फिर कर्तव्य भावना से कुछ भगवान को अर्पण किया जाए। उसको जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे पहले भी, राजा लोग करते थे अश्वमेध यज्ञ और इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, लेकिन कर्तव्य भावना से यज्ञ करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। यद्यपि प्राचीन काल में भी ऐसा होता था कि कर्तव्य समझ करके यज्ञ करने वाले बहुत कम होते थे, जैसे कि महाराज कर्मयोगी महाराज कौन थे, जनक महाराज
महाराज रघु थे।
ये लोग ऐसे राजा थे कि जो लोग कर्तव्य समझ करके यज्ञ करते थे, वो किसी फल की आशा से यज्ञ नहीं करते थे, लेकिन ऐसे बहुत कम है। फिर रजोगुणी यज्ञ किस प्रकार के होते हैं, पढ़िए।
परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जे यज्ञ अमुक दुन्यवी लाभ माटे के गर्व खातर करवामा आवे छे तेने तू रजोगुणी जान।
अत्यधिक जो यज्ञ होते हो इसमें आते हैं रजोगुण में, जिसमें कोई ना कोई लाभ चाहिए। जैसे कुछ लोग स्वर्ग का आसन लेने के लिए यज्ञ करते थे प्राचीन काल में, कुछ लोग 100-100 मेज यज्ञ करते थे अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए। आजकल जो यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान वगैरह सब करते हैं, वो जनरली प्रतिष्ठा के लिए होते हैं कि इसमें हमें भौतिक लाभ भी प्राप्त होगा, सुख सुविधा मिलेगी, सुख संपत्ति घर आवे, दुख कष्ट मिटे। तो ऐसा भगवान से यज्ञ में प्रार्थना करते हैं। और बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, एक बार बहुत साल पहले, अभी तो मैंने पता नहीं सुना नहीं काफी समय से, लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद में कहीं पर बहुत साल पहले कुछ महा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान किए गए थे। तो एक नहीं थे, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ थे और बहुत बड़ा मैदान उसके लिए उन्होंने पूरे मीडिया में सब जगह आ गया था, बहुत सैकड़ों बसीस आई थी उसके लिए और इत्यादि अश्वमेध यज्ञ। तो उस समय मैं देख रहा था कि अश्वमेध में घोड़ा लाए क्या, अश्वमेध में घोड़ा लाए क्या, ये लोग घोड़ा तो लाए नहीं है,
घोड़ा बना दियो किसी चीज का।
हाँ, तो इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ, वास्तव में शास्त्र में ऐसा कहा है कि इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं अश्वमेध इत्यादि, उसमें इतना धन का खर्चा होता है, इतना धन उसके लिए चाहिए, साधारण व्यक्ति वो कर ही नहीं सकता है। राजा लोग के लिए भी अश्वमेध यज्ञ करना चुनौती हो जाती थी पहले, सब राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाते थे, बहुत धन चाहिए उसके लिए,
धन भी चाहिए और सारे उसको अप्रूव करेंगे,
उसका और आजकल के युग में तो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे ऐसे, ब्राह्मण भी स्पेशल ब्राह्मण चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने थे राष्ट्र यज्ञ और उनको जो, तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी और वो धन लेने के लिए धन फंड रेजिंग का डिपार्टमेंट इसको दिया था अर्जुन को, और अर्जुन कहीं 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 जाकर के धन इकट्ठा करते थे, उसके लिए उनका नाम हुआ धनंजय, जो धन का संचय करने वाला।
प्रभुजी उसमें क्या था कि जो पृथ्वी से इकट्ठा नहीं हो पाया था ना अर्जुन का, तो कुबेर जी के ऊपर उन्होंने फिर अलकापुरी पे टैक्स लेने पहुंच गए तब कुबेर ने दिया तभी से उनका नाम धनंजय पड़ा।
प्रभुपाद ऐसा भी कहते हैं कि हिमालय में अभी भी एक माउंटेन है जो माउंटेन पूरा गोल्ड का बना हुआ है, अभी भी है। वहां अर्जुन गया था और वहां से अलकापुरी वहां से उन्होंने पूरा
तिब्बत के पूरे एरिया में
सोआ लिया था,
कुबेर का ही था।
यस, तो इसलिए प्रभुपाद से दैट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही बिकेम धनंजय अर्जुन। तो धनंजय ये भौतिक धन की इच्छा से जो लग गया करते, कुछ लोग तिरुपति जाते सिर मंडवाते, कुछ लोग यज्ञ अलग अलग प्रकार के वो नवचंडी करते हैं और बहुत सारे यज्ञ करते अलग अलग। हालांकि इसके पीछे दो ही मुख्य कारण होता है, एक तो प्रतिष्ठा होती है और दूसरा होता है सुख संपत्ति की इच्छा।
एक ही कारण है, वो है आसन। आसन चाहे जमीन का मिले ऊपर का,
हाँ।
आसन की इच्छा ही है बस।
यस,
आसन की इच्छा है, यहाँ मिले या ऊपर मिले।
तो इसलिए इसको कहा गया है राजसी यज्ञ। जनरली अहंकारों से ये सब होते हैं। अभी तीसरा होता है यज्ञ और तामसी यज्ञ, और पढ़िए।
जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है।
हाँ। शास्त्र के बताए गए निर्देश को जो फॉलो किए बिना उसको यज्ञ करता है, कोई होते हैं ऐसे लोग बहुत सारे कि वो लोग यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते हैं लेकिन शास्त्र के आधार को पूरा फॉलो नहीं करते। फिर जिसमें प्रसाद का वितरण नहीं होता है, जिस यज्ञ के दौरान प्रसाद वितरण नहीं होता है, उस समय में भी वो यज्ञ भी तामसी माना जाता है। फिर वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, बिना वैदिक मंत्र का उच्चारण, और जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं उनको दक्षिणा नहीं दी जाती, या फिर बिना श्रद्धा के, अगर इसमें से कोई भी एक भी हो जाता है तो तामसी हो जाता है। अगर समझ लो आपने वैदिक मंत्र वगैरह सब किया, शास्त्र मंत्र सब, प्रसाद बांटा सब किया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी उस यज्ञ में, तभी भी वो तामसी बन जाता है। अगर आप पूरा फॉलो करते हो लेकिन पुरोहित को दक्षिणा नहीं दिया, तभी भी आप वो यज्ञ तामसी बन जाता है। इसलिए इन सबको प्रपद तात्पर्य में कहते हैं कि तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। समझे, देवताओं से धन अर्जित किया, देवताओं की यज्ञ अनुष्ठान किए और उनसे धन कमाया, और वो जैसे ही धन कमाया उस धन का उपयोग उन्होंने किया शास्त्र की अवहेलना करने के लिए, मनोरंजन के लिए, भोग करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए। तो इस तरह से अगर वो करते तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान को तामसी माना गया है, क्योंकि उसमें जो कुछ आपको लाभ प्राप्त हुआ उसका आपने उपयोग किया शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से, इंद्रिय भोग करना, निषिद्ध आचार करना, पाप आचरण करना, नशा जुआ व्यभिचार इत्यादि, इन सब के लिए। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज में कोई लाभ नहीं पहुंचता, इससे कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार के यज्ञ शायद लोग कोई ना करे वही अच्छा है, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला समाज को। सो तीन प्रकार के यज्ञ का वर्णन भगवान ने यहां पर किया। अब बताते हैं तीन प्रकार की तपस्या। तो पहले शरीर की, फिर है वाणी की, और फिर है मन की। यस
प्रभु, जो आपने बताया ये जो वैदिक मंत्र के उच्चारण के किए बिना, हाँ। तो अभी तो जैसे हम जानते हैं कि मतलब ऐसे कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो अच्छी तरह से उच्चारण कर पाए, और मतलब वो तो थोड़ा बहुत मतलब कुछ परसेंटेज बोल के खत्म कर दे रहे हैं। तो और इसमें अगर मोस्टली सभी और श्रद्धा भी जैसे जो करते हैं उनमें इतना श्रद्धा नहीं होता, तो मोस्टली सभी तामसी की गिने जाते हैं।
इसलिए शास्त्र में यज्ञ विवर्जित है, यज्ञ का वर्जन कर दिया है,
मतलब कलयुग के लिए,
कलयुग के लिए यज्ञ नहीं है, कलयुग में ये हो नहीं सकता। उसमें भी जो स्पेशली शास्त्र में एक श्लोक भी है, अश्वमेधम गवालंबम, अश्वमेधम गवालंबम पैतृकम देवरण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयत। कलयुग में पांच चीज का निषेध है, पांच चीज का निषेध है कलयुग के अंदर, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पिल पैतृकम अश्वमेध यज्ञ निषेध, गोमेध यज्ञ गवालंबम निषेध, संन्यास निषेध, फिर पैतृकम पल पैतृकम पिंड क्रिया पल पैतृकम वो निषेध, और देवर न सुतोत्पत्ति, देवर सुत जब पति की अनुपस्थित, पति की मृत देहांत अवस्था में देहांत हो गया पति का, तो देवर के माध्यम से सुतोत्पत्ति ये निषेध। कलो पंच विवर्जित, ये कलयुग में पांच चीज निषेध है। इसलिए यज्ञ जो है वो कलयुग में सफल नहीं हो सकते, कलयुग में बहुत सारी चीज है, बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे तपन मिश्र ने जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि कलयुग का सबसे उत्तम उपाय क्या है, तो उन्होंने तीन बार रिपीट करके बताया, हरे नाम एवं केवलम, एवं केवलम, एवं केवलम, तीन बार बताया, कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्य। तो कई बार हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसमें यज्ञ कलयुग के अंदर यज्ञ काम नहीं करेंगे, पहला, दूसरा कोई किसी प्रकार का तपस्या काम नहीं करेगी, यज्ञ दान यज्ञ, फिर ज्ञान और योग, ये सब चीज काम नहीं करेगी कलयुग के अंदर। तो इसमें केवल एक ही उपाय है, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। सो यहाँ पर तीन प्रकार की यज्ञ के बाद भगवान अब बताएंगे तीन प्रकार की तपस्या, छह श्लोकों में बताइए। हाँ पढ़िए।
परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है।
हाँ, सबसे पहले भगवान शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, इसमें सब आ जाता है। जैसे कई बार कुछ लोग हम देखते हैं कि कुछ लोग केवल माता पिता को ही मानते हैं श्रेष्ठ, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि भगवान और गुरु उन सब की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई कहता है कि मैं केवल भगवान को ही मानता हूँ, माता पिता को नहीं मानूंगा, गुरु को नहीं मानता, या गुरु उन सबको आदर नहीं देता, तो वो भी गलत है। और कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे लिए तो, कई बार हम देखते हैं इस कौन में, मेरे लिए तो मेरे गुरु महाराज सब कुछ है बस, और कुछ नहीं, बाकी जिसका जो होना हो, मैं किसी और वैष्णव को जानता भी नहीं, मैं उनको प्रणाम करूं ना करूं, उनको रिस्पेक्ट दूं ना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं होते हैं मेरे गुरु एक बस चीज, और हमेशा ठोक ठोक के बोलेंगे कि हमारे गुरु जैसा कोई गुरु मिलेगा नहीं, हमारे गुरु जैसा कोई गुरु मिलेगा नहीं, तो ये भी तपस्या नहीं, ये भी गलत है। आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भगवान, वैष्णव, गाय, ब्राह्मण, इन सभी को आदर देना है, सभी का आदर देना है, उन सबकी पूजा होनी चाहिए।
तो हम लोग एक डिवोटी केयर में अभी कोर्स हुआ था, उसमें गए, उसमें गाय को भी वैष्णवी कैटेगरी में उन्होंने, वैष्णव सेवा में गाय भी
आता ही, इसलिए हमने काव ऐड किया ना इसके अंदर, क्योंकि काव है ही उसमें, गाय है ही उसके अंदर, गाय की सेवा करना इस you know, as good as worshipping brahmanas and demigods and vaishnavas।
इसमें महाभारत में दो तीन जगह से इस बात का वर्णन आता है, कई जगह में एक धर्मराज का काफी उपाख्यान आता है, जिसके अंदर वो एक व्याधा है पहलिया, तो जानवर मार के लाता है और उसको फिर बेचता है। उसमें कौशिक ब्राह्मण थे जो तपस्या करने के बाद उन्हें थोड़ा अहंकार हो गया था, तो वो उधर गए जाके तो उसमें आते हैं। तो व्यासदेव जी ने भी ये माता पिता के लिए बहुत काफी
देखा है।
उसमें ये कहता है कि जब वो कौशिक पूछता है कि तुम पूजा क्या करते हो, क्योंकि जब वो ब्राह्मण पहुंचा वहां तो उसने उसको देखते ही बोल दिया, गुस्सा करने लगे वो, तुम मेरे लिए उठे नहीं है, नहीं तुमने कहा भी बैठ जाओ, मैं सामान तोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर गुस्सा होने लगे, बोले देखो मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारे नजर से मर गई है, अब बैठ जाओ प्लीज। फिर पूछते हैं क्या बताओ, तो कहते हैं कि पिता माता चमे भगवान ये तो मे देवताओं परम, यद देवतेभ्या कर्तव्या स्वयं बाकी करो मैं हूँ। कहते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं ये हमारे लिए परम देवता है, और जो परम देवता के लिए मेरा कर्तव्य है वो मैं इनके प्रति करता हूँ। तो अगर माता पिता को परम देवता मान के पूजा करेगा तो भगवान की पूजा होगी, लेकिन जो अभी के जो माता पिता की बात करते हैं उनको परम देवता नहीं मानते।
हाँ, इसमें शास्त्र के ऐसे आधार है, श्रीमद् भागवतम में इसके विषय में बताया गया है कि माता पिता को परम देवता तब माना जाता है जब माता पिता अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने में सहायता करें।
और उसमें क्या था कि उस व्याध को जो ईमानदारी का और अपने कर्तव्य पे दृढ़ रहना और सारे उसके अंदर सदगुण ब्राह्मणों वाले विद्यमान थे। फिर कहते हैं कि फिर बाकी क्या पूजा करते हो, काफी है कि उसमें ऐसे है तो ममदारा भ्राता पुत्र श्वेत गुणा, काफी लंबा है वाक्या। तो कहते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे बेटे, मेरा बेटा है, सब कुछ है, सबको मूल ध्येय हमारे माता पिता ही है, जिनके लिए मैं हर तरह की सेवा करता हूँ। जब भगवान जी की सेवा होती है वैसे ही मैं सेवा करता हूँ, सुबह स्नान कराने से लेकर रात तक सुलाने तक, और इनके सारे आदेशों का पालन करता हूँ। और उनके सारे आदेश चूंकि धर्म संबद्ध है इसलिए हमें कोई समस्या नहीं आती।
yes.
हमारा जीवन अपन भी चलना है और हमारा बाकी भी
चीज। मुख्य उद्देश्य जीवन का ये होना चाहिए कि जो मनुष्य का मन है उद्देश्य ये होना चाहिए, आप समझे, कि जो वो भगवान के चरणों में स्थिर रहे, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए शरीर की तपस्या आवश्यक है, और शरीर की तपस्या में इन लोगों की पूजा करना ये आवश्यक है।
और पूजा के बारे में मेरे गुरुजी संस्कृत के टीचर उन्होंने बताया कि पूजा पुई धातु से बनता है। पुई पूजा का मतलब होता है पुई पूजा यथा योग्य सत्कार, जो जिस योग्य हो उसको वो सत्कार करना उसकी पूजा है। जैसे कि पिपासिता है पानी, अब कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना पूजा है उसकी, उस समय उसको खाना खिलाना पूजा नहीं है, और अब भूखा है तो उसको भोजन और पानी दोनों देना है। पिपासित है बिना पानी हम छुदी चाहे से भोजन, और जो मूर्ख है उसको अगर आप ज्ञान देते हो वो उसकी पूजा है। इसी तरह से ठंड में कांप रहा है तो उसको अगर गर्मी देते हो तो पूजा है। जबकि आधुनिक काल में पूजा का मतलब मात्र फूलमाला चढ़ाने, फूल चढ़ाने और प्रणाम करने तक ही सीमित है। पूजा एक बहुत ही विशद शब्द है जिस तरह से प्रयोग होना चाहिए।
हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य, यहाँ पर भगवान तपस्या का भेद बताते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर या देव, योग्य ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजन और वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। प्रणाम करने का अर्थ ये होना चाहिए कि उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनने को सीखे। तो जब पूजा की यहाँ पर बात आई है आगे, तो वहां पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि उनका आदर करें, समुचित आदर करें, और आदर करने का अर्थ होता है उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को माने, उसका पालन करें। ये वास्तव में पूजा मानी जाती है। तो ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये कहता है कि ये देखो शास्त्र भी भगवद गीता भी बताते हैं कि ब्राह्मण की पूजा करना यही तपस्या है, या फिर कोई कहेगा कि माता पिता की पूजा करो यही तपस्या है, लेकिन इसलिए सबको लिस्ट में बताया परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इन सबकी पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि मैं केवल मेरे गुरु की ही पूजा करूंगा और किसी की नहीं करूंगा, या फिर मैं केवल भगवान को मानता हूँ, मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए, मुझे कोई माता पिता नहीं चाहिए।
और ये शायद प्रभु जी ग्रेड भी बाय चॉइस दिए गए हैं, सबसे पहले परमेश्वर, फिर ब्राह्मण, फिर गुरु, देव द्विज गुरु
प्राज्ञ,
मतलब सीक्वेंस वाइज।
तो इस तरह से जो भी पूज्य लोग हैं उनकी पूजा करना, साथ में पवित्रता का पालन करना। पवित्रता का पालन करने का अर्थ होता है कि जैसे ठंडी के मौसम में भी स्नान करना, फॉर एग्जाम्पल। अभी आप हमें लगता है जैसे विदेशों में कहीं ऐसे देश है जहां पर ठंडी के मौसम में स्नान करने वाले संख्या बहुत कम होती है, ठंडी के मौसम में कोई स्नान नहीं करता। मैं एक जगह गया था, टेम्पल है अपना, स्कॉटलैंड में बहुत ठंडा होता है हमेशा, वो ऐसे भी है ही जगह ऊंची। तो स्कॉटलैंड में ठंडी का मौसम था, सुबह सुबह मैं उनको कहा कि भाई स्नान करना है, आए डिवोर्स थे लेकिन कोई ऐसा मेरे लायक कुछ था नहीं व्यवस्था। तो मैंने उनको पूछा, तो पहली बात तो डिवोर्स जो है वही स्नान करते, इसके अलावा कोई स्नान नहीं करता उधर वहां पर ठंडी के मौसम में स्पेशली, और वो भी खुले पानी में ठंडे से नहाने का। तो मुझे कहा गया कि वहां खुले जगह है, ओपन प्लेस है, ऊपर आकाश और ठंडा पानी है नहाने के लिए, यू नो। सो इट वाज बिग तपस्या, जैसे आप कहीं बकलो ब्रज मंडल में देखते हैं ठंडी ठंडी में खुले में स्नान करना पड़ता है। लेकिन चाहे खुले में स्नान करना पड़े या कैसे भी, पवित्रता का पालन करना बहुत है, ये तपस्या है। दिन में दो बार कम से कम स्नान करना, फिर आंतरिक शुद्धि होती है पवित्रता, जिसमें गुरु के आदेश का पालन करना। बाह्य शुद्धि होती है कि आप, जैसे मैंने कई पहले भी आपको बताया हुआ है कि कई बार कुछ भक्त लोग प्रसाद लेते हैं और फिर प्रसाद के बाद वो सोचते हैं कि हाथ धोना आवश्यक नहीं है, वो कहकर बोले गिली चीज नहीं थी वो, तो सूखा प्रसाद था, जैसे ड्राई फ्रूट खाया था तो उसमें थोड़ी हाथ गंदे होते हैं। लेकिन नियम है के अनुसार कोई भी प्रसाद को स्पर्श करने, चाहे वो गीला हो या सूखा हो, हाथ स्पर्श करने के पश्चात वो हाथ आपका प्रसाद वाला होता है, फिर आप भगवान की पूजा तो नहीं कर सकते और कोई भी चीज भगवान को ऑफर हो सकती है, ऐसी चीज को छू नहीं सकते। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि कहीं पर भी आपको प्रसाद को छुओ तो उसके बाद हाथ धो लेना चाहिए। आप याद कैसे रख पाओगे कि मैंने छुआ था नहीं छुआ था, इस बेस्ट है हाथ धो लो, ये बेस्ट है। तो ये पवित्रता का पालन करना चाहिए। फिर सरलता, सरलता का अर्थ होता है सिंपलिसिटी, अननेसेसरी लग्जरी का वो प्रयास नहीं करना चाहिए कि मेरे लाइफ में लग्जरी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसा कि वो किसी की भी लग्जरी ऐश्वर्य देखते हैं कि इनको ये सुविधा, इनको वो सुविधा, इनके सुविधा हालांकि होती है लेकिन ग्रेडेशन बदल जाता है। जैसे मोबाइल फोन हमारे पास भी है, उनके पास भी है, लेकिन उनका फोन महंगा है, मेरा फोन सस्ता है, नया ये नहीं चलेगा। गाड़ी तो मेरे पास भी है, गाड़ी उनके पास भी है, लेकिन उनके पास भी BMW, मेरे पास अल्टो है, ये नहीं चलेगा। तो अन्य से शरीर लग्जरी नहीं लेनी चाहिए। सरलता का अर्थ होता है कि जितना शरीर के लिए आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, उतना ही ग्रहण करे। आचरण में सरल बनना है, कहने का तात्पर्य। आचरण में सरल का अर्थ क्या होता है? आचरण में सरल बनने का अर्थ यह होता है कि डोंट बी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक नहीं बनना चाहिए। आचरण में सरल का अर्थ यह होता है, डिप्लोमेटिक का अर्थ क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड, किसी को कुछ बोलना ये, दूसरे को किसी को ये बोलना, तीसरे को ये बोलना, चौथे को ये बोलना, लेकिन करना वही जो मैं सोच के रखा है ऐसे। तो ये सारी चीज सरलता में नहीं आती। फिर ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जो ऑपोजिट सेक्स होती है, ऑपोजिट जेंडर, उनके साथ शास्त्र के नियमों के आधार से ही संपर्क करना, इसके अतिरिक्त और कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य करे नहीं जो शास्त्र से संबंध न हो। वैवाहिक जीवन के अंतर अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। विवाहित जीवन को त्याग करके, आजकल तो ये सिस्टम ही विवाह को ही हटा दिया, पर विवाह चाहिए ही नहीं, विदेश में विवाह सिस्टम ही खत्म हो गई है आजकल, तो बहुत जगह ऐसा, इंडिया भी उसी मार्ग पर चल रहा है आजकल, धीरे 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 वो भी खत्म हो रहा है संस्कार। एक बच्चा था, एक कितने 16 संस्कार, 16 में से दो बच्चे थे, एक विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, तो उसमें से अंतिम संस्कार थोड़ा बहुत अभी भी हो रहा है, विवाह संस्कार धीरे 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 जा रहा है, अभी भी है, सब पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन अभी तो कलयुग की शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है, तो 5000 केवल 5000 साल हुए, केवल अभी तो बहुत लंबा, लॉन्ग वे, 4,27,000 साल और बाकी है, अभी बहुत शुरुआत है, 5000 साल है।
संध्या काल
है, युग संध्या, इसलिए अभी भी हमें तो त्राही माम हो, कैसा कलयुग, कैसा घोर कलयुग, कैसा घोर, अरे कुछ घोर कलयुग नहीं है, घोर कलयुग आएगा अभी। तो ये सब सारी तपस्या है, और फिर है वाणी की, एक शरीर से तपस्या करना आवश्यक है, फिर वाणी की तपस्या भी आवश्यक है। वाणी की तपस्या के विषय में बोलिए। पढ़िए
क्वेश्चन।
या क्वेश्चन,
आपने बताया कि सिंप्लिसिटी, मतलब अननेसेसरी लग्जरी नहीं, तो मतलब
वाटर,
ये सोचना सही है कि जैसे अगर मुझे ज्यादा, और ऑनेस्टली ये सोचना सही है कि मुझे अच्छा सा मतलब अच्छा लक्ष्मी मेरे पास होगा, अच्छा मैं धन कमाऊंगा तो अच्छा सेवा कर पाऊंगा, और ये फैक्ट है कि जैसे मुझे अगर ज्यादा मंदिर के कोई प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करना है या कोई और तरीके से, तो लक्ष्मी तो चाहिए, तो इज दिस ओके टू हैव विलिंगनेस और डिजायर टू अर्न मोर बिकॉज वी वॉन्ट टू रियली सर्व।
एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ ट्रिक बाय माया, ये मन का एक ट्रिक है एक प्रकार का। सबसे पहली बात तो भगवान तीनों प्रकार से हमारी सेवा स्वीकार करने को तैयार है, धन से, शरीर से, वाणी से, बुद्धि से, चारों से भगवान सेवा लेने को तैयार है, इज रेडी, इज ओपन, और उनके लिए चारों का मूल्य एक समान है, धन से देने वाला, शरीर से देने वाला, सबका मूल्य एक समान है। तो पहली बात ये, दूसरी बात कि आपका प्रयास, आपका चेतना, आपका प्रयास कितना अधिक है सेवा करने के लिए, ये देखा जाता है। अचीवमेंट इज सेकेंडरी पार्ट, वो भगवान के द्वारा दिया जाता है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि भगवान पर ये छोड़ दिया जाए कि वो जितना धन देना चाहे उतना दे। आप प्रयास करो, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही हो तो उसको लेना चाहिए, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कृष्ण भक्ति को मिनिमाइज करना, या फिर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना, भक्ति के कार्यों से पीछे जाना, या फिर किसी इलीगल तरीके का सहारा लेना, ये सारी चीजें शास्त्र के आधार से विपरीत है। इसलिए धन कमाने की इच्छा के साथ अगर ये सारी चीज जुड़ी हुई है तो फिर वो कार्य वास्तव में माया की ट्रिक बन जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीज को फॉलो करता है पूरी तरह से, और साथ साथ में उसका बिजनेस अगर वो बढ़ा रहा है, तो इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि देखा जाता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, होता वही होता है कि जो भगवान चाहते हैं। इसलिए अगर कोई भक्त ये सोचता है कि अगर मेरे पास अधिक धन हो तो मैं अधिक भगवान की सेवा कर सकता हूँ, तो इसमें सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये अधिक धन की लालच में हम कहीं फंस न जाए, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लालच ऐसी चीज होती है कि जो हमें स्वाभाविक रूप से आ जाता है, इसका कोई सीमा नहीं रहता।
प्रभु जी, भागवतम में एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये बात कि श्लोक में कहते हैं कि धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनम ही पंकस्य श्रेयो न स्पर्शम ऋणम। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच के धन कमाना चाहता है कि मैं इसे धर्म करूंगा, तो धनोपार्जन बिना किसी गलत तरीके को अपनाए हुए बहुत असंभव है, लगभग आपको कहीं कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कहते हैं उस व्यक्ति की इच्छा उसी तरह की है जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रक्षालनम भी पंकज से, जैसे कीचड़ में कोई आदमी अपने कपड़े खूब गंदे करें और फिर उसके बाद मलमल के धोए। कहते इससे ब्रह्म तत्व नहीं है, इससे इसलिए उसको छोड़ देना ही श्रेयस कर रहा है। अगर भगवान की भक्ति में कोई लगना चाह रहा है तो उसको धनोपार्जन की इस इच्छा से कभी धनोपार्जन करना नहीं चाहिए कि हम इससे धर्म करेंगे या भगवान की धन से सेवा करेंगे। कहते हैं उससे अत्यंत श्रेष्ठ है कि आप उसको छोड़ दो और जो भी आपके पास स्वाभाविक रूप से आ रहा है, जो आपके धर्म पूर्वक उपार्जन से जो आ रहा है, वो चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 लाख हो, उसको डाल दो, वही श्रेष्ठ कर रहा है।
प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में, आपके भाग्य में जितना धन लिखा है उससे 1 रुपया कम या 1 रुपया अधिक वो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होकर के प्रयास करता भी है, फिर भी अगर वो भगवान की शरणागत नहीं है तो वो अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है। जब कर्मों के द्वारा बंधा हुआ होता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के चाहे वो कितना भी प्रयास करे लेकिन उसके भाग्य में जो होगा उससे अधिक वो कमा नहीं पाएगा। लेकिन साथ साथ में जो भगवान के शरणागत है, जैसे श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद के मन में ऐसा इच्छा था कि मैं गृहस्थ आश्रम में कि मैं बहुत धन कमाऊं और फिर मैं भक्तिदान सरस्वती महाराज के आदेशों का पालन करूंगा। लेकिन प्रभुपाद जहां पर भी प्रयास करते थे धन को तो वो विफल हो जाते थे, तो बार बार उनको एक श्लोक याद आता था, यस्य हम अनुप्रणामी हरिश्री तद्धनम शनै। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर मैं अधिक कृपा करता हूँ, अधिक अनुग्रह करता हूँ, नॉर्मल नहीं, स्पेशल कृपा जिस पे करता हूँ, केवल उसका ही धन छीनता हूँ, सबका नहीं छीनता, केवल उसी का धन छीनता हूँ।
स्पेशल कृपा किसको चाहिए?
तो ये धन हरि से तद्धनम शनैः का अर्थ होता है कि उसके उद्देश्य ये नहीं है कि उसका धन छीनना, उद्देश्य ये है कि उसको सब प्रकार से मेरे शरणागत कर देना, उद्देश्य ये है मुझे समर्पण। कई बार कहते हैं ना कि यू सरेंडर बट इफ यू आर स्पेशल सोल देन आई विल फोर्स यू टू सरेंडर। कृष्णा इज लाइक दिस, अगर आप पहले तो कहते आप शरणागत हो जाओ, लेकिन अगर मुझ पर बहुत ज्यादा, मुझे भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है तुम पर, तो क्या करूंगा, मैं मजबूर कर दूंगा, फोर्स कर दूंगा सरेंडर, तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा,
झंडा उठाना ही पड़ेगा।
तब फिर भगवान के सामने ओके यस सर व्हाटएवर यू से, आप जैसे कहो वैसा।
और भी शास्त्रों में एक दो जगह कहते हैं, प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्य देवो पितम नंगही तुम न सकता। कहते हैं कि जो जिसके पास धन मिलना है ना, उसको देवता भी या कोई भी उसको रोक नहीं सकता, वो तो मिलना ही मिलना है। कहते इसीलिए व्यक्ति को न सोचा भी, न तो सोचना चाहिए, न विस्मय हो, न आश्चर्य करना चाहिए कि इसको इतने रुपए कैसे मिल गए। यदस मदीयम नहीं तत् परेशान, जो आपका है वो किसी और का नहीं होगा, वो आपको ही मिलेगा।
सो डिवोटीज शुड एंडेवर टू अर्न मनी बाय नेचुरली the way it comes. So text 15.
सत्य प्रिय लागे एवा चितावा अने बीजाने उद्वेग न पमाड़नारा वचनों बोलवा तथा वैदिक ग्रंथों ने नित्य पाठ करता रहू, ये वाणी नु तप छे।
हाँ, ये अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम चेत, इसलिए ये वाणी का तपस्या। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ये जो तपस्वी का तपस्या करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, ये सारे श्लोक सभी के लिए है, वैष्णव के लिए भी है या नॉन वैष्णव सबके लिए ये फॉलो करना है। जो भगवान की शरणागत है उनको शारीरिक तपस्या के साथ वाणी की तपस्या करनी चाहिए। वाणी की तपस्या का अर्थ क्या होता है कि अगर सच बोलना चाहिए यद्यपि आपको शर्मिंदा होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़ता, कई बार ऐसे सच बोलने पड़ते हैं जिसमें हमारा गलती है, हमारा दोष है, जिसमें हमें शर्मिंदा होना पड़े, हमें लज्जा लाती है, ऐसा बोलने से लज्जा आती है कि ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, कैसा लगेगा ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा सोचता है, ऐसा तो, लेकिन सच बोलना चाहिए। बलि महाराज कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो पर्वतों का बोझा उठा सकती है, नदियों का बोझा उठा सकती है, पेड़ों का बोझा उठा सकती है, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति का बोझा नहीं उठा सकती पृथ्वी। इसलिए जब शुक्राचार्य ने उनको कहा कि वामन देव को बोल दो, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई कोई ऐसा वरदान वरदान देना नहीं है, तो बलि महाराज ने मना कर दिया। बलि महाराज ने कहा नहीं, मैं सच बोलूंगा। तो कई बार हम लोग भक्तों को भी कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सच बोलने से आपका सम्मान बढ़ जाता है, आपकी गलती आधी हो जाती है सच बोलने से। और विशेष करके गुरुजनों को, गुरु या वरिष्ठ भक्त जो भी हो, उन लोगों को सच बोलने वाले भक्त चाहे गलत कार्य करने वाला है लेकिन सच बोलकर स्वीकार करने वाला होता है ना, उसको क्षमा तुरंत कर दिया जाता है। जो सच बोलता है कि मुझसे गलती हुई, तो तुरंत उसको क्षमा कर देते हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं और उसका विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास कैसे बढ़ जाता है कि व्यक्ति भले गलत करेगा लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, वो पूरा निष्ठावान है। तो ऑटोमेटिकली आपके प्रति स्नेह, आपके प्रति रिस्पेक्ट, आपके प्रति कृपा, ये सब बढ़ जाता है क्योंकि ये निष्ठावान है, सच बोलता है, गलत नहीं बोलता। भले उसकी गलती होगी तो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरी गलती हुई थी यहाँ पर ऐसे। तो इसलिए कभी भी कोई गलती हो तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको तुरंत जाकर के स्वीकार करके चैप्टर क्लोज कर दो, उसको लंबा खींचने में समस्या आएगी। इसे ज्यादा लंबा खींचने से बेस्ट ऑप्शन यही है कि गो टू योर अथॉरिटी, आपकी जो अथॉरिटी है उनके पास जाओ और उनके सामने एडमिट करो और बात को खत्म करो। वो जो भी दंड देते हैं उस दंडों को स्वीकार कर लो एंड फिनिश इट ऑफ। सो सच बोलना चाहिए हमेशा मनुष्य। और दूसरा अनुद्वेग कर, अनुद्वेग कर का अर्थ होता है कि किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाना है। मीन्स कई बार कुछ लोग बहुत हार्श स्पीच यूज करते हैं, बोलने में ऐसा कड़वा बोलते हैं कि अब आदमी बैठे बैठे ही मर जाए, प्रोवोक करते बोलने से हत्या हो सकती है किसी की, बोलने से हत्या हो सकती है। जैसे अर्जुन ने युधिष्ठिर को कहा था कि उदाहरण बताया था उसमें कि तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम पांच भाइयों को संभाल नहीं सकते, तुम्हारी पत्नी का तुम रक्षा नहीं कर पाए थे, तुम जुए में सब कुछ हार गए, बहुत सारी चीज इतना सब बोला उनका, इतना अपमान किया। सो देयर आर सम पीपल, मैंने देखा है सम पीपल दे टॉक जिसमें 1% भी हार्शनेस नहीं होती, इतना उनके शब्द का चुनाव भी ऐसा होता है। वो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे ऐसे शब्द चुनते हैं कि जो शब्द किसी को टकराए नहीं, जो शब्द किसी को चुभे नहीं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, सिलेक्टेड वर्ड्स। तो इसलिए अनुद्वेग कर, सच बोलना है लेकिन कई बार होता है कि कड़वा सच होता है, सच बोलना पड़ता है लेकिन गलत है तुम, तो उसको अच्छी तरह से बोला जा सकता है, उसमें कड़वे शब्दों के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मीठे शब्दों से भी वही सच बताया जा सकता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया ऐसे। निसंदेह जब शिक्षक को यह अधिकार है बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उस शिक्षक को चाहिए कि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। अगर कोई मेरा स्टूडेंट है समझ लो, या मेरा डिसाइपल है, मेरा शिष्य है, तो अगर मैं उनको डांट सकता हूँ, ये मेरा एज पर रूल प्रिंसिपल में ये है, लेकिन जो मेरा स्टूडेंट नहीं, मेरा डिसाइपल नहीं है, तो मैं उनको हार्श शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, उनको उद्वेग नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कभी किसी को आपको ऐसा लगे कि इसको डांटने की आवश्यकता है लेकिन वो आपका डिसाइपल नहीं है या आपका स्टूडेंट नहीं है या आप उसकी ऑथोरिटी नहीं हो, तो आप उसको बड़े मीठे शब्दों से कहो ताकि वो विचलित ना हो जाए, उसको बुरा ना लगे। फॉर एग्जांपल, प्रभु प्लीज बुरा मत मानिएगा, अपराध फील मत कीजिएगा, लेकिन आपको इस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा कोई दूसरा कोई उद्देश्य, जस्ट टू हैव अ पोलाइट वर्ड्स। सो डोंट यूज हार्श लैंग्वेज, दैट इज वाणी की तपस्या. इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का प्रलाप. कुछ लोग होते हैं कि आपस में मिलते बैठते तुरंत शुरू हो जाते हैं, इतना बोलते हैं कि आपको लगता है इनका कोटा इनका खत्म ही नहीं होता है. कितना है इनके पास बोलने के लिए, कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग फॉर एवर. आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र से संबद्ध हो, उसे तुरंत अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए. इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए. देखो ये बात भी प्रभुपाद ने मेंशन किया, एक तो शास्त्र का आधार देना चाहिए और सुनने में अच्छा लगना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है जनोईधारी, लेकिन ब्राह्मण के गुणों का उसने अभी तक वो पालन नहीं कर रहा है, अगर उसको जाकर के हम बोल दे और कौन सा ब्राह्मण है तो क्यों जनई पहने से ब्राह्मण बन गया तो, और शास्त्र का आधार भी दे दोगे कि कलयुग में कोई ब्राह्मण कलव शूद्र संभवा, कलयुग में कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तुम ब्राह्मण नाम के हुआ सर. सो इससे क्या होता है, वो इरिटेट हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, वो कहेगा यू नो यू विल नॉट फील गुड, बोले इस्कॉन वाले के ऐसा कैसे बोलते, ये हरे कृष्ण वाले तो अपमान करते हमारा. बट नॉट दैट वे, इस तरह से नहीं, वो केवल वही शब्दों का चयन करो, वही चीज बताओ शास्त्र सम्मत हो और सामने वाले को उद्वेग ना करे. इससे बोल्ड बोल्ड क्या, हमेशा इस प्रकार का बोल्ड बोलना वो हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता. प्रभुपाद किसी को कुत्ता कह सकते थे, रास्कल कह सकते थे, प्रभुपाद कुड से रास्कल टू पीपल. अगर आप किसी को रास्कल बोलोगे तो देखो आपका वो क्या मॉब लिंचिंग हो जाएगा लोग आपकी पिटाई कर देंगे. सो वी शुड नॉट डू दैट. ऑफकोर्स इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम शास्त्र से कॉम्प्रोमाइज करें, शास्त्र में दूसरा एक तरीका दिया है कि वो जगह छोड़कर चले जाओ, ऐसा मेंशन है. सो इसलिए ऐसी वेदना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए. वैदिक साहित्य ज्ञान का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन करना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है. तो वाणी की तपस्या का अर्थ ये होता है कि शास्त्र को पढ़ना, जैसे अगर आप भगवद गीता पढ़ते हो या फिर भगवद गीता के विषय में कुछ बताते हो तो वो वाणी की तपस्या है. पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि आप बोलते हो ना, यू आर यूजिंग योर टंग टू रीड, तो वो पढ़ना, वो शास्त्र श्लोकों का उच्चारण करना, वैदिक शास्त्रों के जो श्लोक है मंत्रास है उसका उच्चारण करना, ये सब वाणी की तपस्या है. भगवान के लिए ही बोलना, भगवान के सेवा के लिए बोलना, ये वाणी की तपस्या है. मौन होने से कोई फायदा नहीं है, मौन ही होकर के फिर पेपर में लिख के देना क्या फायदा है इसे. Yes,
जी मनु महाराज के कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसका वर्णन आता है. वो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन. कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, लेकिन प्रिय असत्य कभी मत बोलो. और कभी जो प्रिय अगर हितकारक सत्य नहीं है तो उसके लिए चुप हो जाओ, उसको बोलो मत, यही सनातन धर्म है. ये मनु महाराज के कोड ऑफ कंडक्ट में है,
yes.
इस तरह से बोलना चाहिए.
हाँ, इसलिए वाणी की
तरह उसी का पूरा
yes. ये देवी भगवान भी कहते हैं इसी अनुद्वेग कर वाक्यम, भगवान का अपना भी ये श्लोक है. सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम च वाक्मयम तप उच्यते. नाउ इट इज वाक्मय और अब है मन का तपस्या. तो मन का तपस्या क्या है पढ़िए.
तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं.
मन की तपस्या का अर्थ होता है कि मन को संयमित बनाना या उसको इंद्रिय तृप्ति से विलग करना. प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि संतोष मन प्रसाद, संतोष होना बहुत आवश्यक है. कई बार भक्त लोग में देखा जाता है कि भौतिक चीजों को लेकर के या फिर आध्यात्मिक चीजों का भी संतोष नहीं होता उसको. भौतिक चीजों का संतोष नहीं होना ये तो बहुत बुरी समस्या है, और आध्यात्मिक चीजों का आध्यात्मिक सेवाओं का संतोष नहीं होना ये ठीक है, कृपाओं का संतोष नहीं होना वो ठीक है, लेकिन अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास अधिक सुविधा हो, मेरे पास अधिक सब साधन हो, अधिक सब धन इत्यादि हो, तो उस चीज से वो क्या हो जाता है, उपदेशामृत में कहा गया है अत्याहार, अत्याहार हो जाता है, वो व्यक्ति फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसकी मन को विचलित हो जाता है। उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचना, ये परोपकार करना, किसी को किसी के विषय में अच्छा सोचना, किसी को हेल्प करना, किसी के लिए प्रचार की भावना, ये अपने आप मन की तपस्या है। किसी को प्रचार करना, किसी की हित के लिए सोचना, जैसे किसी को क्षमा कर देना फॉर एग्जाम्पल, तो ये मन की तपस्या है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो आपको परेशान किया था, लेकिन आप उसके हित के लिए सोच रहे हो, आप उसको भक्त बनाना चाहते हो, इसलिए उसको क्षमा कर देते हो, तो ये मन की तपस्या है। फिर सरलता, प्रभात का तात्पर्य हम थोड़ा पढ़ते हैं, मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है, मनुष्य को कृष्ण भावनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए।
अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है, इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बात को प्रस्थापित भी कर रहे हैं कि इंद्रियों के विषय में जितना आप सोचते हैं, इंद्रियों के विषय में, भोग के विषय में, उतना वो जैसे अग्नि होता है लकड़े के अंदर या कोयले के अंदर, जब अग्नि होता है तो उसको आप हवा डालोगे तो क्या होगा, ऐसे 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 है ना, और ज्यादा और फिर फ्लेम आ जाएगी, है ना, धीरे धीरे, पहले तो फ्लेम नहीं था, फिर धीरे 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 फिर ज्योत आ जाती है जितना हवा डालते हुए। अगर आप हवा डालना बंद करते हो वापिस ठंडा होता जाता है, राइट, वापिस ठंडा हो जाता है, और फिर अगर आप हवा डालते ही नहीं हो काफी समय तक तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इंद्रिय भोग के विषयों का चिंतन, केवल चिंतन, सोचना, ये उसको हवा डालने जैसा है।
तो विषय
तो विषय ध्यान करना, केवल बस सोचते रहना, सोचते रहना। जैसे अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने एक चित्र देख लिया एक बार, वो एक सेकंड के लिए, ऐसा नहीं थी कि तीन घंटे का मूवी लगाकर बैठ गया था, ऐसा वो जस्ट पासिंग बाय, और जाते जाते रास्ते में उसने एक चित्र ऐसा देख लिया, बस एक सेकंड के लिए, और देख करके पहले तो घबरा गया, बाप रे बाप ये लोग कैसा कर रहे हैं, और तुरंत वो समझ गया कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, लेकिन वो उसने आंखें बंद कर दी, वो पूरा मुड़ गया कि ये तो नहीं देखना चाहिए मुझे, तो लेकिन वो उसके फोटो खींच गया और वो फोटो उसके माइंड के अंदर चला गया। अब क्या हुआ, अभी उसी चीज को सोच रहा है, धीरे 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 वो उसको हवा मिलना शुरू हो गया, और जैसे हवा मिलना शुरू हो गया फिर कामस्त संगा संजायते काम, फिर अंत में वो वेश्या के चक्कर में फंस गया। तो यही होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंतन करते हो तो समस्या ये आएगी कि आप फंस जाओगे उसके इच्छाओं की तृप्ति के अंदर। और फिर प्रभुपाद ये भी कहते हैं तात्पर्य में कि सबके कल्याण के विषय में सोचना, छल कपट से मुक्त होना, छल कपट, कम से कम भक्तों के साथ छल नहीं करना चाहिए, बाहर भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, लेकिन कई बार हम देखते कि भक्तों के साथ भी लोग छल कपट करते, झूठ बोलते, कहीं आई नो मैनी डिवोटी, कहीं कहीं होता है ये कच्चा सब्जी होता है, आपके पास जब लाएगा तो पूरा तड़का बड़का मार करके मसाला वसा डाल करके सब मिला करके पूरा लेके आएगा, हालांकि होता है उसमें कुछ नहीं, 10% सत्य होता है, बाकी 90% सब बेकार होता है। तो ये सब आदतें जो होती है वो गलत है, इससे हमें बचना चाहिए। तो और गंभीरता का अर्थ होता है कि वो मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के विषय में सोचता रहता है, ऐसे टाइम पास पड़ा रहता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ आते तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, फिर जैसे हम घर चले जाते हैं तो 4-5 दिन 6 दिन ऐसे निकल जाते हैं, फिर जब इधर आते तो लगता है कि हमने तो क्या किया लास्ट 5-6 दिन क्या किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे तो टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है,
यही चीजें
कैसा ये तो क्या हो रहा है लाइफ, इस प्रकार का लाइफ एक्चुअली इस प्रकार का लाइफ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर जो मन का जो तपस्या है ना गंभीरता मौनम उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे। गंभीरता का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के सावधान रहे और अलर्ट रहे, क्या बोलते अटेंटिव रहे, उसको चौकन्ना रहना चाहिए कि उसको भाई उसके जीवन में इतना टाइम बचा नहीं है। और कलयुग में ये समस्या है कि लोग मंद भागी और मंद होते हैं, मंद स्लो, बहुत स्लो होते, धक्के मार के गाड़ी चलानी पड़ती, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि उसको बहुत उजागर रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। कोई लोग सोचता है कि बोले देखो ये तो बड़ा भक्त बन गया, कोई कहेगा अगर आप गंभीर भक्त बनने का प्रयास करते हो तो गंभीर व्यक्ति जो होता है वही सफलता प्राप्त कर सकता है ना, जो गंभीर नहीं होता है वो क्या करता है, वो टाइम पास करता है, कई कई साल से भक्ति में जुड़ा हुआ होता है, 5-10 साल 15-20 साल कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसके आध्यात्मिक परिवर्तन बहुत कम, इतना स्लो मोशन में काम कर रहा है वो कि पता ही नहीं पड़ता कि स्टैंड स्टिल खड़ा है या चल भी रहा है या फिर पीछे जा रहा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हमेशा चौकन्ना गंभीर रहना चाहिए कृष्ण भक्ति को लेकर के। और मनोनिग्रह का अर्थ होता है इंद्रिय भोग से पृथक करना, निष्कपट, ये बहुत बड़ा लक्षण है व्यवहार में निष्कपट होना, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना आचरण में वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, ब्राह्मण लोग निष्कपट होते हैं, ब्राह्मणिकल, वो कपट नहीं कर सकते किसी के साथ। सो अगर कोई भक्त ब्राह्मणिकल क्वालिटी को स्वीकार करना चाहे वैष्णव क्वालिटी, तो ये वैष्णव क्वालिटी बात है कि वो निष्कपट होता है, उसके अंतर में उसके बाहर में कोई दोगलापन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ लाभ उठाना चाहता है, इस तरह उसका हृदय में वो पहले जो आगे बताए सबके कल्याण की इच्छा होती है, इसको मन का संयम बोलते हैं। सो दैट इज मना प्रसादात सौम्यतम। फिर नाउ जब भगवान ने ये 6 श्लोकों में तपस्या का वर्णन किया, इसके पश्चात यस यू हैव क्वेश्चन,
आपने बताया कि तो कैसे हमें पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं या वहीं है या पीछे जा रहे हैं।
आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के मापदंड इस तरह से होते हैं कि आपका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ रहा है और भौतिक आकर्षण कम हो रहा है कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ रही है और भौतिक रुचि कम हो रही है कि नहीं। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन करते हैं, आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम होता है। लेकिन अगर आप खुद, हम इतने तो अनपढ़ है नहीं कि हम ये तय नहीं कर सकते कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ ये भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल, इतने शास्त्रों इतने समय से सुना है पढ़ा है तो हम ये कार्य को तो नाप सकते हैं कि भक्ति के अनुकूल है या भक्ति के प्रतिकूल है, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रतिकूल कार्य हम कर रहे हैं तो पहले की तुलना में अभी भी उतना ही है या कम हो गया, अगर कम हुआ है इसका अर्थ है कि आपका प्रयास जारी है। अगर आप प्रयास करते जाते हैं और जो आदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको आप फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं तो धीरे 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 सफलता तो मिलना ही है, गारंटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं है कि नहीं मिलेगा, सफलता मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति अभी कुछ समय पहले मुझे कह रहे थे कि हम तो गुरु महाराज के सभी आदेश का पालन तो कर ही रहे, तो मैंने कहा कि अगर आप सभी आदेश का पालन करते तो आप तो परमहंस बन जाते। आप सभी आदेश का पालन कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो? हाँ, सभी आदेश का पालन करने का अर्थ ये होता है कि आपको शुद्ध भक्त के सारे लक्षण आप में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो भी कहते हैं अगर आपको 100% फॉलो करोगे, 100% तो देन यू आर, यू नो, देन यू आर शुद्ध भक्त। 100% मीन्स 10 नाम अपराध से बचना है तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, इंद्र तृप्त के कार्यों में नहीं फंसना, ये तो गुरु जी सब जगह कहते ही है। तो इन सब चीजों को अगर आप पूर्ण रूप से पालन करते हो, गुरु का अर्थ ये नहीं कि गुरु ने आपको पर्सनली जो बोला है 1-to-1 उसको ही आदेश माना जाता है, ऐसा नहीं होता है। गुरु जो प्रवचनों में तात्पर्य में प्रभुपाद जो लिखते हैं ये सभी गुरु की आज्ञा है, अब उसको फॉलो करते हैं दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग 100%। लेकिन इफ यू फॉलो 100% देर इज नो डाउट अबाउट इट दैट यू विल गो बैक होम बैक टू गॉड। प्रभुपाद से कि अगर मुझे कोई एक ही व्यक्ति ऐसा मिल जाए, ओनली 1% जो 100% फॉलो करता है, तभी भी मेरा ये आंदोलन चलेगा 10,000 साल तक के लिए, तभी भी जस्ट 1%। तो इसलिए हमें प्रयास पूरा करना है, ऐसा नहीं कि असंभव है, अरे प्रभु जी इतना सब तो कैसे हो सकता है, सब हो सकता है, इसमें कोई असंभव कुछ नहीं है। एक चीज की कमी है बस, किस चीज की कमी है? हमारा प्रयास, हम प्रयास भी नहीं करना चाहते इस विषय में। कभी एक बार प्रयास तो करो, प्रयास करने से ही सफलता हो जाती है, यह है चैतन्य महाप्रभु का कृपा। आपको करना नहीं पड़ता, आप केवल प्रयास करते हो फिर सफलता दे देते आपको तुरंत, क्योंकि प्रयास करने वाले भी बहुत कम होते हैं ना। प्रयास कितने लोग करते हैं? प्रयास करने वाले ही बहुत कम है। अभी तो केवल 3 ही श्लोक हुआ है, अभी और 3 श्लोक बाकी है तपस्या का।
लाभनी इच्छा न करना तथा केवल परमेश्वर में परोवायेला मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा पूर्वक करेलु ये 3 प्रकार नु तप सात्विक कहवाये छे।
सात्विक तपस्या, तपस्या भी सब प्रकार से होती है 3 गुणों के ऊपर। तो कौन सी तपस्या सात्विक है? भौतिक इच्छा से नहीं होता और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य के द्वारा दिव्य श्रद्धा से होता है, तो ये सात्विक तपस्या है। जैसे कि दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न होने वाला, भगवान की सेवा में जुड़ने वाला, या भगवान के लिए तपस्या करने वाला, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सात्विक सतोगुण में आता है। लेकिन रजोगुण की तपस्या इससे विपरीत होती है। पढ़िए।
जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है, यह न तो साई होती है न शाश्वत।
हाँ, तो यहाँ पर क्या दंभ पूर्वक, दंभ पूर्वक का अर्थ होता है कि वो डाल देते है, यू नो, कुछ लोग कि हम लोग ये करते वो करते, लेकिन जब आप उनके असलियत देखोगे तो वो लोग फिर दंभ करते है। दंभ का अर्थ ये भी होता है कि घमंड से लोगों को आकर्षित करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए। कई बार हम लोग भक्तों को कहते हैं कि अगर आप कोई तपस्या करते हैं तो इसका ढिंडेरा मत पीटो, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो सब मत बोलो। अपने अपनी प्रशंसा केवल वही लोग करते हैं जिनकी प्रशंसा करने वाले अब संसार में कोई बचा ही नहीं। वो लोग अपनी प्रशंसा करते क्योंकि उनका कोई मिला नहीं, तो वो खुद करना शुरू कर देते हैं। तो खुद की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, एक व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे कहे प्रभु मैं इतना सारा सेवा करता हूँ तो मुझे कृपा नहीं मिलेगा। मैं कहा इतना सारा सेवा करते हैं आप, मुझे तो नहीं लगा। तो मुझे पूरा दिन, फिर मैंने सोचा कि इनको अच्छी भाषा में बताना पड़ेगा। मैंने कहा देखो कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सेवा करता हूँ। जो भक्त सेवा करता है अगर बार बार ये सोचता है कि मैं बहुत सेवा करता हूँ तो बेचारा फंस जाता है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ। हालांकि आप ये सोचो कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है, खाता पीता हूँ सो जाता हूँ और कुछ नहीं करता।
फैक्ट
है, फैक्ट है। और कुछ नहीं होता है मुझे। तो इसलिए अपना प्रशंसा सम्मान की भावना से तपस्या नहीं करनी चाहिए। सेवा भी होती है तो सेवा भी इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए कि आपका अनाउंसमेंट तो होना चाहिए ना, कम से कम नाम तालियां तो बजनी चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ नहीं प्रभु, कुछ 1% तो रिकॉग्निशन तो होना चाहिए, कम से कम आपकी फाइल में तो डाल दो मेरा नाम कि इसने सेवा किया था।
सम्मान
की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
यस प्रभु, और अगर भक्त अच्छा करते हैं तो उनको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए,
हमारे अतिरिक्त सबको अप्रिशिएट करना है। हमारे अपने को छोड़ करके इसी तरह से अगर कोई दूसरों का अपमान करता है तो पूरा हनुमान बन जाओ, पूरा जला दो लंका उसकी। लेकिन अगर कोई मेरा अपमान करता है तो फिर उसमें कोई उसको मन पे लेने की आवश्यकता नहीं।
उसके लिए एक मुझे पता नहीं, शायद आपने बताया, किसी और भक्त ने बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इधर गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने। उन्होंने बोला था कि हम आपके चरणों में अपराध अगर कोई करे तो हम उसको कैसे, तो उन्होंने आप मेरे चरणों में अपराध कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं वैष्णव हुई नहीं। अमेजिंग।
अगर वो तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, वो भक्त भी सामने वाला सोच रहा था, पर मैं कर ही नहीं सकता अपराध तो, पर हाँ क्योंकि अगर मैं वैष्णव हूँ तो मेरा अपराध लगेगा ना, मैं वैष्णव हूँ ही नहीं तो मेरा अपराध कैसे लगेगा। तो ये भाव होना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं तुम वैष्णव अपराध कर रहे हो, अच्छा वैष्णव अपराध हो रहा है, मीन्स आप खुद ही घोषणा कर रहे हो कि तुम वैष्णव हो। सो ऑफ कोर्स कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान या पूजा या सत्कार प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की जाती है वो रजोगुणी तपस्या होती है। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थ से पूजा करवाते हैं, मेरी पूजा करो, मेरे पांव दबाओ, मेरे मुझे प्रणाम करो, मेरा महाप्रसाद खाओ। तो ये रजोगुणी तपस्या है, सॉरी रजोगुणी, या रजोगुणी तपस्या है। सो उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं और इससे जो फल प्राप्त होता है वो भी क्षणिक होता है, टेम्पररी, वो कुछ परमानेंट नहीं होता। उसको लेकर कि मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया हूँ, लेकिन ये कुछ समय तक का महात्मा होता है, वो सही नहीं होता है, बाद में चला जाता है। तो इसलिए ये रजोगुणी तपस्या है, इसलिए इसमें नहीं फंसना चाहिए। जैसे कई शास्त्र में ऐसे कई सारे उदाहरण है, बट वी हैव लेस टाइम सो वी डोंट काउंट ऑल द। यस
प्रभुपाद लीला में एक प्रभुपाद के डिसिपल ने बताया था कि मतलब उनका उनको मतलब उस टाइम पे वो मतलब सब भक्तों ने मिलके प्रभुपाद व्यास पूजा के टाइम मतलब हाउ टू से उन्होंने ये मतलब किया था कि कौन सबसे ज्यादा सेवा मतलब मिल पाएगा। तो एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उनको वो सेवा मिला क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो वो मतलब हनी से प्रभुपाद का मतलब वो बोल रहे थे कि मुझे एकदम आराम से सेवा करना था, तो मैं भगवान प्रभुपाद का मतलब वो शहद से पाद प्रक्षालन कर रहा था, तो थोड़ा मैं टाइम दिया गया। प्रभुपाद प्रभुपाद मेरे सामने देखा, बोला जल्दी करो हरिओम। तो तब उन्होंने बताया कि प्रभुपाद उसको बिल्कुल भी ऐसे एंजॉय नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ अपने गुरु की प्रति उसको ऑफर कर रहे थे, सेवा मान के वो ले रहे थे, क्योंकि हम लोग सब सीख सके गुरु की सेवा कैसे की जाती है।
तो प्रभुपाद एक्चुअली पर्सनली सब चीजों सिखाते थे। जैसे एक एग्जाम्पल और श्रुति कीर्ति प्रभु का एग्जाम्पल है, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 4:30 बजे मंगला आरती होता था सब जगह, तो वो मंगला आरती में वो जाते थे, लेकिन जो उनको पर्सनल सेक्रेटरी बने तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि एक दिन तो गए मंगला आरती में, प्रभुपाद ने पूछा कहाँ पर है वो, तो बोला मंगला आरती करने गए। तो एक दिन तो कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन प्रभुपाद ने पूछा कहाँ गए वो, बोला उसको, तो बोले मंगला आरती 4:30 बोले मंगला आरती कर, तो बोले उसको भेजो इधर। और वापिस आया तो उनका सेक्रेटरी, प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम्हारी मंगला आरती यहाँ रहने, इस कमरे में तुम्हारी मंगला आरती है। अर्थात प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य था कि तुम्हारा कार्य है मेरी सेवा करना और यही तुम्हारी मंगला आरती है, बस। तो गुरु से ऊपर कुछ नहीं होता है, गुरु कहते हैं कि ये तुम्हारी मंगला आरती तो वही तुम्हारी मंगला आरती। अर्थात कहने का अर्थ था कि कई बार गुरु इस तरह से शिक्षा देते हैं शिष्य को सिखाने के लिए, क्योंकि उद्देश्य ये है कि हम रजोगुणी तमोगुणी इस प्रकार की तपस्या ना करें। जैसे हनी वाला एग्जाम्पल दिया, तो उसका उद्देश्य था पाद पक्षाहन करना, अपना इंद्र तृप्ति करने का इच्छा गलत था। कई बार क्या होता है कि कृष्ण की सेवा करने में भी मैं अपना सेंस एंजॉयमेंट ढूंढता हूँ, तो ठीक है, बुरा नहीं है, चलेगा, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं मानी जाएगी, शुद्ध भक्त नहीं मानी जाएगी।
सेवा से अटैचमेंट हो जाता है,
सेवा से अटैचमेंट इन सेवा विद द मोटिव, इट इज नॉट अहितुकी, ये अहितुकी नहीं है, इसमें भी आपका कुछ हेतु है। क्या हेतु है? कम से कम 2-4 फोटो अच्छे आने चाहिए, या फिर सबको देखना चाहिए कि ये शिष्य कितना गुरु से करीब है, मैंने कितने भक्त बनाए, देखो गुरु महाराज मैंने इतने भक्त बनाए, तो क्या ये मोटिव है, ये हेतु है इसके पीछे, ये सेवा के पीछे का हेतु है। तो इस प्रकार से अगर कोई हेतु से करता है वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है, क्योंकि उसका उद्देश्य गुरु की सेवा करना नहीं है, खुद को प्रसन्न करना है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ इसको लेकर के, दो माताजी कुकिंग करती है, दो माताजी कुकिंग और भगवान के लिए कुकिंग करती है, लेकिन नहीं वो नहीं करेगी, मैं कह रहा भाई एक आइटम ज्यादा बनेगी तो भगवान ज्यादा खाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, राजभोग की सेवा तो मैं करूंगी। समटाइम्स दे फाइट लाइक दिस, द पॉइंट ये नहीं है कि पॉइंट, अगर भगवान को प्रसन्न करने का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब खुद को प्रसन्न करना है तो फिर सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते। फिर अभी ये हुआ रजोगुण, अब तमोगुणी तपस्या।
मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है।
ये जैसे असुर लोग करते हैं, जो था ना शिव जी को पूरा हाथ शरीर के टुकड़े करके करते यज्ञ में डाल रहा था, और काटते 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 गले तक पहुंच गया। अब गला काटने वाला था, अभी कोई व्यक्ति आपके सामने गला काटेगा तो आप क्या करोगे? आप उसको ना बोलोगे कि नहीं कि भाई मत करो, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, गला मत काटो। इसी तरह से शिव जी आए थे, प्रसन्न होकर के नहीं आए थे। कल उसके बोले शिव जी के नाम पे न्यूज़पेपर में मीडिया में छप जाएगा, फेसबुक में, कि शिव जी की तपस्या करने वाला ने अपना गला काट दिया शिव जी के कारण। शिव जी बोले नहीं नहीं मैं आ जाता हूँ, रुको रुको रुको। शिव जी उधर आए, शिव जी ने आकर के कहा कि क्या चाहिए, और सिर पे हाथ रखो बस में हो जाएगा क्या? ये कोई वरदान है? ऐसा वरदान कोई होता है? लेकिन जैसे हिरण्यकशिपु, ये लोग देवताओं का वध करने के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को खत्म करने के लिए। हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, लेकिन उसकी तपस्या इतनी घोर थी, लेकिन जैसे ही बाहर आया तपस्या करके सबका जीना हराम कर दिया, देवताओं को ब्राह्मणों का सबका जीना हराम कर दिया। ब्रह्मा से ऐसी ऐसी वस्तुएं मांगे कि बाद में फिर भगवान को उसका वध करना पड़ा। असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना तो निश्चय ही तामसी है। जो चीज आपको कभी मिलने नहीं वाली ऐसी वस्तु के लिए घोर तपस्या करना, ये तो अवश्य ही तामसी है। सो अभी 3 प्रकार के दान है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं।
जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है।
तो क्या क्या है इसमें? कर्तव्य समझ करके दान करना, जैसे भाई 50% मेरी जो इनकम है वो मुझे भगवान की सेवा में या उनके भक्तों की सेवा में देना है, तो ये है। कर्तव्य समझ करके दान दिया किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। प्रत्युपकार का अर्थ होता है कि डोनेशन के सामने मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। कई बार आजकल ऐसे डोनर्स बहुत कम होते हैं, दान देते लेकिन उसको सामने आधा तो मांग लेते वापिस, ये भी दो ये भी दो, ये सुविधा भी दो वो सुविधा भी दो, क्यों? पर मैंने डोनेशन दिया है। फिर समुचित काल या स्थान में, समुचित काल का अर्थ होता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, सुपात्र योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जैसे वैष्णव या ब्राह्मण को देना चाहिए दान, वो सबसे उत्तम है। वैदिक साहित्य में ऐसे दान की संस्तुति की गई है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। पढ़िए।
वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य या पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है।
इस प्रकार का दान मिस, वो व्यक्ति निर्धन बेचारा मर रहा है लेकिन ठीक है तुम उसको दान देते हो, लेकिन इस प्रकार के दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि उसका अगर वो उसका उपयोग गलत तरीके से करता है। कोई व्यक्ति देखने बड़ा बड़ा भिखारी लगता है लेकिन आप उसको 100 रुपए देते हो, जाओ तुम 2 रोटी खा लेना, ये 100 रुपए रखो, लेकिन वो 100 रुपए से 2 रोटी नहीं खाता है, वो 100 रुपए से जाकर के दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो वो तुम्हारा जो दान है वो उचित दान नहीं हुआ, वो पात्र व्यक्ति नहीं है वो। और फिर आप कैसे पता पड़ेगा कि कौन कैसा है? इसलिए तो कहा गया है कि यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी पता करेंगे कि ये व्यक्ति उचित है या उचित नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है बुरा है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन कई बार दान करने का बड़ा करुणा और शिक्षा होता ही है, तो प्रसाद का एक टुकड़ा दे दो, खा जाएगा, उसको क्या कर पाएगा, वो प्रसाद को खाना ही पड़ेगा उसको, तो प्रसाद खा सकता है, लेकिन कैश नहीं देनी चाहिए, कैश देने से नुकसान हो सकता है। लेकिन इसलिए केवल वैष्णव या ब्राह्मण को ही धन दे सकते हो दान में। और समय क्या बताया है, तीर्थ स्थान में जगह का है, मंदिर तीर्थ स्थान इत्यादि, फिर मासांत चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण इत्यादि, तो इन सब समय में दान देना उचित है। सो ये है सत्वगुणी दान, किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, ये सोचना चाहिए हमें। और ऐसा भी नहीं कि दान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, दान देना चाहिए, क्योंकि दान देना ये अपने आप में कुछ लोग का नेचर ऐसा होता है कि वो दान दे नहीं सकते, जैसे दान की बात आते ना तुरंत वो परेशान हो जाते हैं, दान देना पड़ेगा, मिस मैंने इतनी मेहनत से कमाई हुई धन उसको किसी को देना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, दान देना चाहिए, दान देने से ही हमारा धन शुद्ध होगा। और दान देने वाला व्यक्ति जो होता है, जो सत्वगुणी दान देने वाला, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप दान देते हो उसको तुरंत उसका डबल होकर के वापस आ जाता है आपको तुरंत। जैसे कुछ शास्त्रों बताया कि किसी को वैष्णव को दान देने से 1000 गुना फल मिल जाता है, ऐसे बहुत सारा ऐसे मेंशन किया गया। तो आप दान देने वाला जो होता है उसका जो अमाउंट है दान दिया हुआ वो कभी भी कम नहीं होता है उसके कोटे में, वो बढ़ ही जाता है, डबल होके वापिस आ जाता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं प्रभु दान नहीं, दान देना चाहिए। अभी रजोगुणी दान कैसा है वो पढ़िए।
किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है।
हाँ, मुझे क्या मिलेगा, मैं दान तो दूंगा, मुझे इसमें आप क्या क्या देते हो, इंटरनेशनल होटल रूम बुकिंग और क्या क्या, इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ दे सकते हो क्या, VIP एंट्रेंस मिलेगा, वो मिलेगा, डिक्रा मिलेगा, फलाना मिलेगा, तो बहुत सारी चीज डिमांड होती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो प्रत्युपकार की भावना चाहता है, यू नो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे दो ऐसा, या फिर मैं इतना दान दूंगा तो वो क्या सुदामा ने सत्तु दिए थे तो बंगला वो महल बन गया था, तो मैं भी कुछ दो किलो चावल डाल लेता हूँ राधा गोविंद जी के पास तो शायद मेरा भी कुछ बढ़ जाए। तो ये सारी भौतिक इच्छाओं से, फिर कर्म फल की इच्छा से मुझे कोई फील, फिर अनिच्छा पूर्वक ले जाओ, और उसके जाने के बाद भी बोलेगा वो हरे कृष्णा वाला आया था और लेके चला गया, और मना बोले मैं मना नहीं कर पाया उसको, वो इतना उसका प्रभाव इतना था कि वो बोल रहा था तो मैं उसको ना नहीं बोल पाया, कितना ले गया वो ही कुछ ले गया, वो इच्छा तो नहीं था मेरी, मुझे उसका आधा ही देना था, ये सब अनिच्छा बोल, इच्छा नहीं हुई और फिर भी उसने दान दिया। हालांकि भगवान के भक्तों को इच्छा के बिना भी दान करेगा तो उसका फायदा ही है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दान देने वाले के लिए ये ठीक नहीं है। जो दान देने वाला है, आपको मन में इच्छा नहीं होती फिर आप दान देते हो, ये प्रभु जी आए हैं इनको भी दक्षिणा देना पड़ेगा, अरे भाई कौन मांग रहा है दक्षिणा, नमत दो दक्षिणा, ना भी देना पड़ेगा, व्यवहार है, तो ये दक्षिणा देता अंदर से इच्छा नहीं होती है, दक्षिणा देना पड़ेगा दक्षिणा, तो इस प्रकार के दान का कोई मूल्य नहीं है, वो उससे अच्छा तो नहीं देना चाहिए, बेस्ट दान रजोगुणी दान करने से अच्छा है कि मत करो। दान लेने वाले को कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि दान लेने वाले का तो पता ही नहीं कि इसकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर वो समझ जाता है कि इसकी इच्छा नहीं है तो शायद वो सामने से मना कर देता है कि मत दो मुझे दान, कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है तभी भी चलेगा बिल्कुल इच्छा नहीं है फिर भी चलेगा
तो चलो ले लेते हैं,
अरे आप उपकार कर दो, ऑब्लाइज कर दो, कृपा कर दो, जो करना है करो, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, जाओ तुम आए हो तुम्हें ले जाओ दान लाओ, नो प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम।
अभी जी कई बार गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो कई लोग बैठे होते हैं ऐसे, तो कई लोग भक्त लोग पैसा दान कर देते हैं।
हाँ, इसलिए मैंने पहले बताया ना कि जब हमें नहीं पता ना कि कौन कैसा है, ठीक है वो ब्रजवासी है वृंदावन में रहता है इसलिए दूसरे लोगों से तो अच्छा है कि वो ब्रज में उसका जन्म हुआ है, वो सब तो ठीक है, वो सब अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद इस बात को लेकर बहुत सावधान होने को कहते थे कि किसी को भी धन मत दे दो, चाहे ब्रज में ही क्यों ना रहता हो, किसी को भी धन मत दे दो, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति क्या करने वाला है इस धन का, तब तक उस व्यक्ति को धन देना ठीक नहीं है,
इसलिए
खाने पीने का दिया, फिर उसकी आवश्यकता देख लो, अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो वो दे सकते हो इत्यादि, फिर भी उत्तम दान तो नहीं है, उत्तम दान तो शास्त्र दान है, ज्ञान दान वो सबसे उत्तम है, ज्ञान दान या भक्ति दान वो सबसे उत्तम है, किसी व्यक्ति से हरे कृष्ण बुलवाओ, नाम दान, ये सबसे उत्तम है, ये दान देना सबसे उत्तम है, क्योंकि वो चीज आप हजारों हजारों लाखों रुपए दोगे, पूरे जन्म तक उसकी लाइफ के दौरान उसका भोजन की व्यवस्था करोगे, ये सबसे भी ये इसकी तुलना नहीं की जा सकती, अगर वो एक बार हरे कृष्ण बोलेगा तो, इसलिए नाम या आध्यात्मिक ज्ञान का दान, भक्ति का दान, इस सर्वश्रेष्ठ दान है। फिर प्रभु तात्पर्य में कहते हैं कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों कर दिया, कभी कभी वरिष्ठ जनों के दबाव से पिताजी ने कहा है कि दे दो इसको वाले को चेक, तो वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर दान गया, जो रजोगुण में माने जाते हैं, अनेक दातस्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, संस्था ऐसी होती है जैसे कुछ क्लब्स होती है, फिर कोई एनजीओ होते हैं और कुछ इस प्रकार की संस्था होती है कि जो लोग दान लेते हैं आपको सब बेनिफिट देते हैं, फिर आपको इंद्रिय भोग की सुविधा भी देते हैं कि आप कभी भी हमारे यहाँ पर आ सकते हो, हमारा क्लब हाउस है उसमें आप जो करना कर सकते हो इत्यादि, इसलिए इस प्रकार के दान की संस्कृति नहीं है। अभी लास्ट वी टॉक अबाउट तमोगुणी दान एंड देन वी स्टॉप, तमोगुणी दान पढ़िए।
तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है वो तामसी कहलाता है।
अपवित्र स्थान में दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई तू, अरे शराब पीना है मुझे, पैसे क्या करेगा, बोले मर जाऊंगा बिना शराब के, वो बेचारा मर जाएगा, दे दो इसको थोड़ा एक बोतल दे दो और क्या। तो ये अपवित्र स्थान अनुचित समय में, फिर अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया है। आदर के बिना है, कुछ लोग फेंकते हैं बिना आदर के, जैसे रोटी देते हैं किसी को भिखारी को खाने के लिए तो उसके ऊपर फेंकते है, वो तमोगुण होता है, आसुरी। भाई तुम ये क्या कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो उस व्यक्ति का, है ना। तो ये तामसी का हालत है। तात्पर्य बढ़िया,
यहाँ पर हम बड़ी बड़ी यहाँ पर मदपान तथा द्रुट की राह में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है।
सम्मान के बिना भी अगर किसी उपयुक्त व्यक्ति, समझ लो किसी वैष्णव को भी अगर आप दान देते हो लेकिन उनका अनादर या उनका अपमान करके देते हो तो वो दान तामसी दान है। जैसे वो मिस्टर एन ने दिया था, मिस्टर नायर ने, मिस्टर नायर ने दान दिया लेकिन बाद में उसने बहुत कष्ट दिया तो उसके दान देने का कोई मूल्य ही नहीं रहा, उल्टा उसको तो प्रभुपाद कहा कि वो उसको हमेशा नरक में जाएगा मिस्टर नायर। तो इसलिए दान अगर वैष्णव को भी दिया जाए लेकिन आदर के बिना दिया जाता है तो वो दान तामसी दान माना जाता है। कभी कुछ लोग आई कैंप्स खुलवाते हैं या हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए और इन सब के लिए जो दान दिया जाता है इसमें होता क्या है कि जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए वो लोग आपको आशीर्वाद तो देंगे, थैंक यू आप कितना अच्छे हो, आपने मुझे फ्री में ट्रीटमेंट दिलवाया, इतनी अच्छी हॉस्पिटल, सब बोलेंगे। लेकिन जैसे हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे वो क्या करेंगे, वही आंखों का वही शरीर का उपयोग करेंगे पाप के कार्यों के प्रति, पाप कर्म के प्रति। एक व्यक्ति के पास आंखें है तो वो सब गंदी वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें थी नहीं लेकिन आपने उसको सहायता किया, पैसा देकर के उसकी आंखें वापस लाया, तो आपको लगा मैंने कितना दान दिया, देखो किसी की आंखों किसी के नेत्र वापस लाए। अरे भाई तुमने नेत्र वापस ला करके तुम्हारी समस्या और बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि अब वो फिर से पाप करेगा और वो जो पाप करेगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो आंख थी नहीं लेकिन आपने उसकी सहायता की। इसलिए पात्र को दान करना बहुत ही रिस्की होता है। कई बार वो एक भक्त है हमारे, उसके पास कोई भी चाहे वो ऐसे पैसा दे देता है। एक बार मैंने उसको कहा तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है कि तुम किसी को कुछ भी दे देते हो, तो मेरे पास तो लंबी लिस्ट है। मैं बताता हूँ ना मुझे कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, यहाँ पैसा सेवा का मैं उपयोग, यहाँ इतनी सारी जगह है, बोले इधर डालो ना पैसा, किसी को भी कितना भी दे देते हो। उसको बोलना पड़ा कि इतना सारा पैसा आप क्यों देते हो किसी को भी। तो इसलिए धन का और दान का जो उपयोग है या उसको करना चाहिए वो बहुत ही सोच समझ कर सुपात्र को देना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि दान देना ही नहीं। 18वें अध्याय में आता है ये चीज, यज्ञ दान तप ये कभी किसी मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं इस भक्त बन गया हूं तब मुझे दान की कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं भक्त बन गया हूं तब तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। दान तो करना चाहिए, तब भी करना चाहिए, लेकिन आपके पास जो है उसका दान करो। अगर आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास भक्ति है, नाम है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका दान करो, वो चीज का दान दो, लेकिन दान अवश्य करो। सो एनी क्वेश्चन?
यस। दान देने से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकता है?
दान देने से हम हमारी भौतिक आसक्तियों से दूर होते जाते हैं। दान देने से हमारा जो भौतिक आकर्षण है वो कम होता जाता है। जनरली जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त होता है वो व्यक्ति दान नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अपने धन में आसक्त है, अपनी संपत्ति में आसक्त है, और अपनी संपत्ति किसी को बिना किसी उपाय से देना, बिना किसी सामने कुछ लेना नहीं है बस उसको देना, तो वो व्यक्ति धीरे 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 इन सब चीजों से निकल जाता है बाहर आसक्तियों से। इसलिए आसक्तियों से मुक्त होना, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए दान बहुत लाभप्रद होता है। दान देने से जैसे समझ लो कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और 100 रुपए में से अगर आप 10-20 रुपया रेगुलरली भगवान की सेवा में दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उतना प्रतिशत आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग किया है, यू सैक्रिफाइस्ड, ये आपने दान दिया है। तो ये दान देने से क्या होगा, आपका धन भी शुद्ध होगा और आपकी चेतना भी शुद्ध होती है। ऐसा होता है, इसलिए बेस्ट यही होता है कि दान देने के टाइम पर भी जब सब कुछ देने की इच्छा होती तब संग किसी से कंसल्ट करना चाहिए कि कोई वरिष्ठ भक्त से या इसे पूछना चाहिए कि हमें ये दान मुझे देना है तो किस प्रकार से दो, सब कुछ दे दूं, 50% दो। रूप गोस्वामी कहते 50% दो, 50% उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर आपके घर में ठाकुर जी का विग्रह है तो वो खर्चा भी भगवान की सेवा में आता है, इसलिए 50% भगवान की सेवा में, 25% पर्सनल इमरजेंसीज के लिए और 25% रिलेटिव सेविंग्स, सेविंग्स इज 25%, रिलेटिव 25%। अपना सेविंग्स तो इमरजेंसी के लिए उपयोग होता है और 25% होता है रिलेटिव के लिए। रिलेटिव का अर्थ होता है कि पुत्र परिवार इत्यादि। तो जो मुनाफा है आपका, जो इनकम है उसका 25% आपका होना चाहिए सेविंग्स, और 25% जो होना चाहिए वो फैमिलीज के लिए, और 50% जो होता है वो वैष्णव और भगवान की सेवा के लिए। इस तरह से रूप गोस्वामी है सेठ। अब कोई कहेगा प्रभु जी अगर ऐसा करेंगे तो हमें तो भिखारी हो जाएंगे, तुम्हारे इतने सारे लोन पड़े हैं, ये सब पड़ा है, कैसे पूरा करेंगे हम। बट एनीवे ये आइडियल यही है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अगर आप देखो कि घर में सब भक्त है तो एनीवे आपका जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी भगवान के भक्तों के लिए ही हो रहा है, बट स्टिल यू शुड फाइंड आउट कि मुझे कुछ तो देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। यस,
नित्य सेवा प्रोग्राम,
या वी हैव इन आवर टेम्पल वी हैव नित्य सेवा प्रोग्राम, और उसमें ऐसी कोई नहीं है कि आप बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, आप जो अमाउंट से करना चाहते हो, जो आपके मन में आता है उस अमाउंट से आप नित्य सेवा शुरू कर देना चाहिए। आपको किसी को लगेगा कि क्यों देना चाहिए, वो इसलिए देना चाहिए कि आप भूल जाएंगे, इसलिए बेस्ट है कि आप नित्य सेवा में रजिस्टर कर दो तो वो अपने आप
बैंक नहीं भूलेगा,
बैंक नहीं भूलेगा वो तो डाल ही देगा, वो सेवा कर हो ही जाएगा,
पता भी नहीं चलता है।
हाँ, और फिर आपको बाद में अगर कभी आप देखते हो भी स्टेटमेंट देखते हो तो आपको इतना परेशान नहीं होता, वो मुझे पता है वो 500 रुपया 1000 रुपये मेरे खाते में से वो जाता है हर महीने में। फिर आप कहेंगे इससे अच्छा तो मैं कोई EMI ले लेता, कोई ये कर देता, कोई वो कर देता, तो ये लाइफ टाइम EMI है, यू नो लाइफ लॉन्ग EMI, आपको नेक्स्ट लाइफ में भी काम आएगा, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस।
एक मेरा प्रश्न है, जो हम सरकार को इनकम टैक्स देते हैं वो किस ग्रुप में आता है?
प्रभुपाद ऐसा कहे हैं कि जब जब हम किसी भी देश में रहते हो, जिस देश में हम रहते हो, उस देश की सरकार चाहे थर्ड क्लास हो या कैसे भी हो, लेकिन उस देश की सरकार के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। प्रभुपाद से दिस थिंग, अगर इस्कॉन के जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसमें भी बताया कि संस्था को चाहे सरकार एकदम निकम्मी हो फिर भी उनके बनाए गए जो रूल्स है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए टैक्स लीगली जितने आपसे बनते हैं टैक्स बचाओ, लेकिन इसके अतिरिक्त फिर टैक्स बचाने से बाद में फिर लोग कहेंगे बोले इस्कॉन वाला था टैक्स में पकड़ा गया।
नहीं, ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सरकार को हम इनकम टैक्स देते हैं
और रजोगुण सत्वगुण किस में आता है,
भगवान जी की सेवा में जाएगा, परिवार में जाएगा या व्यक्तिगत उसमें जाएगा, वो सुपर से
नहीं, वो किस में जाएगा?
वो प्रभु बोल रहे हैं कि अपने जो इनकम है उसकी बात कर रही है, इसके बाद
टैक्स के बाद की बात है,
टैक्स के बाद ही है,
टैक्स का दो मतलब इनकम टैक्स कटने के बाद में
प्रॉफिट, प्रॉफिट
प्रॉफिट की बात है,
प्रॉफिट प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट हो जाता है,
आता है वही ना, ऑन हैंड आते है वही,
नो व्हाट एवर जीएसटी इनकम टैक्स जितना लगता है उसके बाद जो
बचता है बाय डिफॉल्ट तो जो है वो
प्रॉफिट में से डिविजन होना चाहिए। यस आप कौन कौन, यस आप कुछ कह रहे थे? तपस्या साधना का एक भाग है, लेकिन साधना में तपस्या से ज्यादा भी है, जैसे भगवान के लिए उठना अर्ली मॉर्निंग ये तपस्या है, लेकिन भगवान का प्रसाद खाना ये तपस्या नहीं है, लेकिन वो साधना का भाग है। ऐसे तो सारे उठना, माला का जप करना, 16 माला जप करना, मैं तो हमेशा भक्तों को कहता हूँ कि सबसे बड़ी तपस्या भक्तों की यही है, 16 माला जप करना, वो सबसे बड़ी तपस्या है। 4:30 बजे उठना ये बड़ी तपस्या नहीं है, ये कोई भी उठ सकता है, गधा भी उठ जाएगा 4:30 बजे तो, लेकिन 16 माला ध्यान से करना, अच्छी तरह से 16 माला करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। साधना मीन्स रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, जैसे 4:30 बजे उठना, मंगला आरती करना, 16 माला जप करना, श्रीमद् भागवत सुनना, प्रवचन सुनना, और नवदा भक्ति के जो अंग है उन सबका फॉलो करना, और प्रसाद खाना, सेवा करना, अर्चा वगैरह की सेवा करना, ये सब साधना के, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सब साधना के अंग है। साधना का अर्थ होता है साधन, साधन मीन्स वो उपाय जिसके माध्यम से हम भगवान के करीब जा सके, इसको साधन कहते हैं, इसको साधन का फिर साधना हो गया, इसलिए साधन भक्ति बोलते हैं उसको, साधन। तो वो आपके नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में आएगा, दो प्रकार के भक्ति, साधन भक्ति और रागनों का विधि साधन, फिर रागनों का साधन, दोनों साधन भक्ति के बाद। हम यहाँ पर पृथ्वी में केवल साधन भक्ति ही करते हैं, तो विधि साधन होता है या रागनों का साधन होती है, बस हम और कुछ नहीं करते, यहाँ पर दो ही प्रकार की भक्ति करते, विधि साधन या रागनों का साधन।